धन्यवाद आपको। आज रात्रि यहाँ फिर से होना अच्छा है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता लगा कि मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हर कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यदि आप आत्मा की अगुवाई पर चलते हैं तो ये ठीक है, ये सबसे अच्छा है। ये एक संदेश है जो कभी असफल नहीं होता। अब आज मैं कमरे में बैठा हुआ था, एक विशेष सेवक जो मेरे हृदय को बहुत पसंद है, उन तीन मेरे अच्छे वास्तविक मित्र, उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे साथ दोपहर के खाने पर जाने के लिए आ रहे हैं। और मैंने सोचा, भाई ये तो अच्छा है, आप जानते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता लिया क्योंकि मुझे निश्चय था कि वे इसका भुगतान करने वाले हैं, आप देखिए। और मेरा अच्छा पूरा खाना, इसलिए 12 बजे और 1 बजा और 2 बजा वहाँ अभी भी कोई नहीं था। वहाँ इस प्रकार से था, पुलिस एक मुजरिम का पीछा कर रही थी वहाँ चौक में, और इसलिए मैं इस घटना को देखने नीचे चल दिया। मैं भाई जय आदि को कुछ नहीं ढूंढ सका। इस प्रकार से मुझे पता लगा कि होटल के आदमी ने उन्हें गलत नंबर दे दिया और वो सारे समय गलत दरवाजा खटखटा रहे थे, जहाँ की मैं नहीं था। मैंने उन्हें अपने लिए भुगतान करने दिया एक बार फिर, यद्यपि कभी कभी वो और भाई ट्रेसी, निश्चय ही मैं उन्हें देखकर खुश हूँ, और भाई ब्राउन को। आज रात्रि ये बस ऐसा प्रतीत हुआ, हमें फिर वापस एरिज़ोना जाना चाहिए। मैं स्मरण कर सकता हूँ कि उस दिन रेगिस्तान से पार आते हुए मैंने अपनी पत्नी को बताया, वहाँ पीछे मैंने कहा, यहाँ जहाँ भाई जैक अपनी छोटी शेवरले में बैठे हुए थे, भाई ब्राउन और वो मूल सृष्टि के विषय में विवाद किया कि ये 6 दिन में हुआ था या ये 60 लाख वर्षों में हुआ था। ये अच्छा था। उनमें इतना विवाद हुआ कि वे बाहर गए और हाथों में पत्थर ले आए और वे खंभे के पीछे हो गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंके जितना वे फेंक सकते थे। वे इसे इस प्रकार से तय नहीं कर सके। कहा, मैं तुम्हें भगा दूंगा, और वे अपने अपने रास्ते चले गए। भाई जैक एक छोटे कद का व्यक्ति, जितनी जोर से वो मुड़ सकता, और भाई यंग अपने लंबे लंबे पैरों के साथ, आप जानते हैं, मैं कभी भी अपने जीवन में इतना नहीं हंसा। तब भाई जैक अपनी कार में बैठ गए और अपने जूते उतारे। भाई शेरिट ने हमें संतरों का बड़ा थैला दिया, और इसके पहले हम शेयर पॉट पहुँचे उसने आधा साफ कर दिया। यद्यपि आप उन सुनहरे दिनों को जानते हैं, जी हाँ श्रीमान, वे सुनहरे दिन थे। मैं जानता हूँ ये उपहास सा लगता है, परंतु ये सत्य है। परंतु हम इस विषय में कुछ हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं, आप उन दिनों को सोचते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि फिर से जिएं। ये ठीक बात है, हमारे जवानी के दिन, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वे सब चित्रों में ढल जाते हैं। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि ये शुद्ध और पवित्र था, और भाईचारे की संगति, प्रेम में, ये जानते हुए कि हम ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, जहाँ वो महान देश सामने, जहाँ हम कभी भी कभी नहीं बूढ़े होंगे या कभी नहीं मरेंगे। हमारा मूल्यवान भाइयों में से एक, हम सबको बहुत प्यार था, वो अभी पार होकर उस देश में चला गया। और हर बार मैं इस मंच पर आता हूँ, मैं समझता हूँ मैं भाई लाइल के लिए सोचूंगा। मैंने गत रात्रि देखा और छोटे जूडी को वहाँ पर बैठे हुए देखा, और मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि वो कैसे चली गई, और मैं जानता हूँ कि जब पिताजी मरे कैसे, परंतु हमें केवल कष्टों के उन विद्यालयों से निकलना था कि ये जाने कि कैसे दूसरे लोग अनुभव करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपने पुराने सेवक मित्र को देख रहा हूँ जो यहाँ बैठा है, मैं उसका नाम याद नहीं कर सकता। क्या ये ठीक बात है? आप यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना किया करते थे सारे समय, वर्षों पहले की बात है। गेरहल्स, ये जर्मनी नाम है, मैं इसे कभी ठीक से नहीं समझ पाया। भाई ट्रेसी इनसे वहाँ बाहर मिले, और मैं इन्हें 10 वर्षों से जानता हूँ, और मैंने कहा, आप इन 10 वर्षों में 6 महीने से अधिक बूढ़े नहीं हुए। हम एक संसार में रह रहे हैं जिसे किसी दिन रुकना ही है। अब आज रात्रि आपको कल रात्रि से अधिक देर हो गई थी, आज मैं यत्न करूंगा आज रात्रि ऐसा ना हो। अपनी कथा पूरी की, मैं आज रात्रि के विषय में सोच रहा था कि रैप्चर के विषय पर कलीसिया को प्रचार करूंगा, कैसी स्थितियां हैं, जैसा कि मैं ये पवित्र वचन में देखता हूँ, रैप्चर के लिए कलीसिया को कैसी दशा में होना चाहिए, रैप्चर के जरा पहले क्या घटित होगा और ये कैसे घटित होगा। और हम सब रैप्चर यानी उठा लिए जाने पर विश्वास करते हैं, क्या हम नहीं करते? हम इसमें विश्वास करते हैं। और तब एकदम से किसी चीज ने कहा, आज रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना करो। और मैं यहाँ एक मैक्सिकन भाई के संग खाना खा रहा था, मैं गया और उसे सड़क पर ले गया। मैं समझता हूँ आज रात्रि वो यहाँ पर है, वो और उसकी पत्नी। और फिर कोई आया और मुझे एक गवाही बताई, कहा यदि कलीसिया के क्षेत्र में, वो बोली वहाँ एक व्यक्ति था, मैं समझती हूँ वो लगभग एक वर्ष पहले की बात थी कि वो विचारों के परखने की पंक्ति में आया। और आज रात्रि मैं सोच रहा था कि पुराने रीति की प्रार्थना पंक्ति हो, जैसे भाई जैक और भाई यंग ब्राउन मेरे लिए प्रार्थना पत्र बांटा करते थे। और मैंने उन्हें वास्तव में ईमानदार पाया और कभी भी पत्र बेचते नहीं पकड़ा या कुछ गलत करते। ये वास्तव में साफ सुथरा है और हमने उन्हें ये करने का यत्न करते हुए पकड़ा, आप जानते हैं। इसलिए हम भाई यंग, वो सारे समय अपने कर्तव्य पे थे और निष्ठावान, और मुझे याद है वो खड़े होकर कार्डों को लिया करता था और उन्हें पंक्ति में लाता था और मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और हम बढ़ते जाते बस शुद्ध विश्वास के साथ जो उन लोगों में था। यदि वे आपके समीप आ सकते तो वे चंगे हो जाएंगे, और मैं सोचता हूं कि वहां 1 से 20 चंगाइयां हुई जो अब हमारे पास हैं। तब ये कहानी दोपहर बाद एक व्यक्ति के विषय में आई, संभव है अब वो यहाँ पर हो, कि वो 1 वर्ष पहले प्रार्थना पंक्ति में था कहीं, और उसे विचारों के परखने में उसे बताया गया कि उसे मम्स थे, और डॉक्टर ने उसे बताया मम्स के बाद कि उसके कभी भी छोटी लड़की ना होगी, और वो हमेशा एक चाहता था। मैं सोचता हूँ उसके पास लड़के थे, परंतु प्रभु की ओर से दर्शन में उसे बताया गया, परंतु तुम एक छोटी लड़की मिलने वाली है, और उसने कहा यहाँ आज रात्रि उसके पास छोटी लड़की है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, हो सकता है ये भक्त मंडली में होगा या वो व्यक्ति जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ कहीं पर, मैं नहीं जानता। किसी ने मुझे अभी बाहर उसके लिए बताया, ओ बच्ची यहाँ गोद में है, ठीक यहाँ पर वहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ओ कितनी प्यारी छोटी सी, चल के जाने के लिए किसी के लिए दूर नहीं है, बहुत सुंदर छोटी लड़की, यहाँ आकर मैं उसे लेता और गवाही देता। संभव है वो कल होगी या किसी समय जब हमारी सभाएं हो रही हों। अब कल प्रातः व्यापारियों के नाश्ते के समय क्या आपने घोषणा की, मैं समझता हूँ, और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और अब आइए दिव्य चंगाई पर एक छोटा छोटा सा पाठ लेते हैं, कितने इसका विश्वास करते हैं। ओ एक महान रात्रि होने जा रही है जब आपके पास इस प्रकार का विश्वास है। लोग जो इसका विश्वास करते हैं यही जो इसे लेता है, ये विश्वासियों के लिए है। अब फिर मैंने अपनी पेंसिल उठाई और कुछ विषय लिखने जा रहा था और आदि आदि, और तब बिल्ली ने दरवाजा खटखटाया और बोला पिताजी। मैंने कहा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। उसने कहा परंतु भाई जैक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने अटका दिया, मेरे पास कागज की क्लिप नहीं थी, मेरे पास मेडा की जॉनी पिन थी या किसी प्रकार की पिन, वैसे बॉबी पिन कहते हैं, यही थी बॉबी पिन, एक प्रकार की पिन, और मैं इन चीजों के विषय में अधिक नहीं जानता, और मैंने इसे वहाँ पड़े हुए देखा, इसलिए उसको पेपर की क्लिप बना लिया कि उसको अलग रखूं जहाँ मैं या था। प्रातः के लिए कुछ टिप्पणियाँ, उन्हें अलग किया एक दूसरे से। जब आपकी उम्र बढ़ती है ये होता है, मैं उन पवित्र लेखों को स्मरण नहीं रख सकता और चीजें उतनी ही सरलता से, परंतु अपने आप जानते हैं कि एक परिश्रम करना पड़ता है। क्या आपको ये परेशानी होती है भाई जैक? अब भी ये ठीक बात है। मैंने भाई जैक को बताया, यहाँ अधिक समय नहीं हुआ। मैंने कहा भाई जैक आप जानते हैं, मैंने कहा मैं हो रहा हूँ, मैं स्मरण नहीं रख सकता। मैंने कहा मैंने कुछ कहना आरंभ किया और मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसने कहा क्या आप यहीं तक थे? और मैंने कहा क्या यहाँ तक पर्याप्त नहीं? उसने कहा नहीं, कहा मैंने किसी को टेलीफोन मिलाया और कहा आपको क्या चाहिए था। मैंने सोचा आप मुझसे हंसी कर रहे थे भाई जैक। मैंने पाया कि ये सच था। जी हाँ श्रीमान, आप कैसे भूल जाते हैं। परंतु हम अपने सारे कार्य ठीक करें, क्योंकि ये एक पुस्तक में है, एक अभिलेख जिसे कि न्याय पर दर्शाया जाना है। अब हम एक बड़े परिवार के समान हैं, और मैं नहीं समझता कि आज रात्रि हम समस्त राष्ट्र में टेलीफोन से जुड़े हैं, जैसा कि पिछली रात्रि मैं अपना संदेश प्रचार कर रहा था। मैं सोचता हूँ ये बस एक स्थानीय मंडली यहाँ पर है, इसलिए पिछली रात्रि निश्चय ही मैं आपके खड़े होने की सराहना करता हूँ। मैं यत्न नहीं करता, मैंने भाई जैक का लाभ लेने का यत्न नहीं किया, परंतु उन्होंने सदा मुझसे कहा कहिए जो आप कहना चाहते हैं, और इसलिए मैं बस मंच पर आया और थोड़ी सी शिक्षा को प्रचार किया। परंतु इस प्रकार से हमारे पास और मेरे कुछ नामधारी भाई लोग, उस दिन प्रातः मैंने एक स्वप्न देखा। मैं अक्सर स्वप्न नहीं देखता, मैं स्वप्न देखने वाला नहीं हूँ, परंतु मैंने स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति है, एक नौजवान हथकड़ी, वो उसमें से निकलने का यत्न कर रहा है, और मैंने कहा किसी ने मुझे बताया, कहा वे भयानक लोग हैं, उनके साथ कोई वास्ता मत रखो। और मैंने देखा ये युवा इन हथकड़ियों से निकल रहा है, और मैंने उसकी चिंता नहीं की। मैंने सोचा मैं देखूंगा कि वो क्या करता है। इस प्रकार वो निकल गया और वो एक भला व्यक्ति था, और मैंने देखा दूसरा निकलने का यत्न कर रहा है, ये केवल एक स्वप्न है। और मैं इस ओर गया और मैंने भाई रॉय बॉर्डर्स को देखा, मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र कैलिफोर्निया में रहता है। ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है, उसकी आंखें आधी बंद थीं और एक बड़ा शायद कैंसर या कुछ उसकी आंखों पर था, और मैं कोई मुझे उनसे अलग खींच रहा था। मैं चिल्लाया, भाई बॉर्डर्स, प्रभु यीशु के नाम में बाहर निकल जा। और वो कठिनाई से बोल सका, कह रहा था, भाई ब्रनम, ये इससे और कुछ अधिक लेगा, मैं इसे पकड़ ना सका। भाई ब्रनम, मैं इसे पकड़ ना सका। मैंने कहा, ओ भाई बॉर्डर्स, मैं उसे प्रेम करता हूँ। और किसी ने मुझे खींचा और मैंने देखा, और ये एक महिला यहाँ खड़ी थी। जब मैं छोटा लड़का था, मैं इन लोगों के लिए किराने की दुकान से किराने का सामान लाता था, और उसका नाम श्रीमती पिंटन था। और जब कभी भी जेफरसन विले में रहती है, पत्नी की एक अपनी सहेली और मेरी मित्र, और उसने कहा, भाई ब्रनम, हमें इससे छुड़ाएं, ये एक नरक का घर है। और कहा, आपने गलत समझा, और कहा, ये आपने इन लोगों को भी गलत समझा, कहा, ये बहुत अच्छे लोग हैं। परंतु, और मैंने उधर देखा, एक बड़ा नाच घर या बड़ी बड़ी दीवारें, और नीचे की ओर एक बड़ी गुफा और बड़े बड़े लोहे के डंडे 8 या 10 इंच मोटे, और लोग आपे से बाहर हाथ और पैर को मोड़े मरोड़े हुए और अपने सिर को इस प्रकार पीट रहे हैं। और वो चिल्ला रही थी, कह रही थी, भाई ब्रनम, लोगों को छुड़ा लो, कहा, हम संकट में हैं, हमारी सहायता करो। वो स्वयं, मैं उसे जानता हूँ, वो वहाँ से, मैं विश्वास करता हूँ, चर्च ऑफ क्राइस्ट से है, या क्रिश्चियन चर्च, ब्रदर कलीसिया कहलाती है। इसलिए वो, मैंने चारों ओर देखा और मैंने कहा, मेरी इच्छा थी मैं कर सकता होता, और चारों ओर देखता रहा, और मैं, मेरी छोटी मामूली सी देह और वे बड़े बड़े लोहे की छड़ें, और वे बेचारे लोग वहाँ अंदर, आप उन्हें नहीं निकाल सकते, वे लोहे की छड़ें पास पास लगी थी, और मैंने देखा वे अपना सर पीट रहे थे जैसे कि वे पागल हों। और मैंने देखा कुछ ज्योतियां वहां अंदर चमक रही थीं, और मैंने देखा वहां प्रभु यीशु मेघधनुष की ज्योति जो उसके चारों ओर थी खड़ा था, कहा, इन लोगों को छुड़ा लो, और वो चला गया। और मैंने सोचा, मैं उन्हें कैसे छुड़ा सकता हूँ, मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं कि इन लोहे की छड़ों को तोड़ दूं। इसलिए मैंने कहा, नरक के घर यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। और सारा का सारा घर चटकने और हिलने और पत्थर लुढ़कने लगे, और लोहे की छड़ें गिर रही थीं, और लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, छूट गए, और अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, और सब छूट गए थे। और तब मैं चिल्ला रहा था, भाई रॉय बॉर्डर्स, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा रहा है, भाई बॉर्डर्स, आप कहाँ हैं। और इसके लिए मैं आश्चर्यचकित हुआ। आप जानते हैं, भाई बॉर्डर्स बहुत डरे हुए थे, आप भविष्यवाणी जानते हैं, सब आप में से बहुत से करते हैं, आप टेप आदि लेते हैं उस पश्चिमी किनारे के विषय में। आज रात्रि वो व्यक्ति वहाँ बैठा है, जब ये हुआ, ये वहाँ था जब हम वहाँ शिकार गए, शिकार की यात्रा पर वहाँ खड़े थे। एक सेवक जो बीती रात्रि सुन रहा था अंधी आंखों के साथ, वो बस आया वहाँ पर और कहा, अपना परिचय दिया। उसने रंगीन चश्मा पहन रखा था, पहाड़ों में। उसने कहा, भाई ब्रनम, बोला, मैं भाई मिक्की हूँ। उसने कहा, मैंने आपकी एक सभा की जिम्मेदारी लेने में सहायता की एक बार कैलिफोर्निया में। मैंने कहा, भाई मिक्की, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। और वहाँ लगभग 20 व्यक्ति खड़े थे, हम बाहर जंगली सुअर के शिकार पर थे। और मैंने कहा, पहाड़ों पर एक दिन जाने के पहले मैंने भाई बैंकवुड से कहा, आप सब इसे जानते हैं, एक व्यक्तिगत मित्र। मैंने कहा, भाई वुड, एक पत्थर उठाओ और हवा में फेंको, और वो नीचे आ गया। और मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, कुछ चीज घटित होने को है। इसलिए उसने कहा, वो क्या है भाई ब्रनम? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, परंतु 24 घंटों के अंदर आप देखेंगे कुछ घटित होने को है। ये एक महान चिन्ह है। और अगले दिन, ये दोपहर बाद था, अगले दिन लगभग 10 बजे हम निकलने की तैयारी में थे। हर एक के पास अपना सुअर था और हम वहाँ खड़े थे, और भाई मैकेनी और आप जानते हैं, और सब वे उन्हें तैयार कर रहे थे, और भाई बॉर्डर्स और मैं और भाई रॉय रॉबर्टसन, एक अपाहिज अनुभवी, बहुत ही प्रिय, मेरा मूल्यवान मित्र, और वो वहाँ खड़ा था। और मैंने ऊपर देखा, भाई मैक्यू ने कहा, भाई ब्रनम, क्या प्रभु का दूत कभी आप पर, जब आप शिकार पर होते हैं, प्रकट हुआ? मैंने कहा, भाई मैक्यू, जी हाँ, ये ठीक बात है, परंतु मैं यहाँ एक प्रकार से विश्राम के लिए आता हूँ। उसने कहा, ठीक है। भाई ब्रनम, बोला, मेरा अर्थ आपको परेशान करना नहीं है। मैंने कहा, आपने मुझे परेशान नहीं किया। और बस मैंने चारों ओर देखा, और मैंने देखा डॉक्टर उसकी आंख देख रहा है। अब मैं उसे नहीं जानता था, उसने काला चश्मा पहन रखा था, एरिजोना में चमकदार धूप थी। और मैंने इसे देखा, और मैंने देखा एक डॉक्टर उसे बताता है, कहता है, श्रीमान, मैं वर्षों से इस आंख का इलाज कर रहा हूँ, 2 वर्ष से, ये ऐसे ही कुछ, ये एलर्जी जो आपकी आंख में है, आप इस आंख से हाथ धो बैठेंगे, ये दृष्टि को खा रहा है, कोई विधि नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं। और मैंने कहा, आपने मुझसे ये क्यों पूछा? अपनी आंख के कारण, ये धूप का चश्मा, आपकी आंख खराब है। उसने कहा ये ठीक बात है। और मैंने कहा आपका डॉक्टर उसे बताया, उसने आपसे कहा है कुछ ही दिनों पहले आप अपनी आंख उस एलर्जी के कारण जो दृष्टि को खा रही है खोने वाले हैं। वो इसका इलाज कुछ वर्षों से कर रहा है और वो इसे नहीं रोक सका। उसने कहा भाई बनम ये सच बात है। और मैंने घूमते हुए देखा, मैंने इनकी आयु से अधिक की एक स्त्री को देखा, गहरे रंग की थी। वो मूल रूप से यहीं कहीं अरकनसास से थी और उसने अपना स्कर्ट ऊपर खसकाया और कहा पुत्र यदि तुम भाई बनम से मिलो तो उनसे मेरे पांव के लिए प्रार्थना करने को कहना। और एक लंबा ट्यूमर उनकी पैरों की उंगलियों के बीच लटक रहा था। मैंने कहा आपकी माँ सफेद बालों वाली है। और उसने अपना स्कर्ट ऊपर किया, अपने मोजे और अपना पैर आपको दिखाया और कहा यदि आप मुझसे मिले तो मुझे उनके पैर के लिए प्रार्थना करने को कहना। और उसने कहा ओ दया हो। मैंने पीछे देखा और उसे बिना चश्मे के खड़े देखा, दर्शन। मैंने कहा यहोवा यूं कहता है परमेश्वर आपकी आंख चंगी करता है और आपकी माँ को भी चंगा करता है। उस समय के लगभग मैं घूमा, अब वो व्यक्ति यहाँ बैठा है वहाँ पर खड़ा था। मैंने भाई रॉय बॉर्डर से कहा या भाई रॉय रॉबर्टसन से मेरा हाथ उसके कंधे पर रख दो क्योंकि वो एक अनुभवी है। मैंने कहा भाई रॉय तुरंत ही कहीं नीचे छिप जाओ, कुछ होने को पक्का है। उसने कहा भाई बनम आपका क्या अर्थ है? मैंने कहा बताने बातें ना करो, किसी चीज के नीचे तुरंत चले जाओ। और मैं घूमा और बेलचा उठाया, वहाँ से एक और को उनसे अलग चला गया क्योंकि मुझे मालूम था कि वो यहाँ आएगा जहाँ मैं था। और दर्रे के किनारे इस इमारत से 8 या 10 गुना अधिक ऊंचा ये एक घरनुमा दर्रा है, जैसे कि स्वर्ग से आग नीचे आई चक्रवात के समान। जहाँ मैं खड़ा था उससे कुछ ही फुट ऊपर पहाड़ से पत्थर उखाड़ दिए और चला गया, पेड़ों की चोटी काट दी, लगभग 100 गज दूर फेंकी। और हर कोई भाग रहा था और ट्रक और किसी चीज के नीचे चला गया। ये वापस ऊपर गया और एक बड़ी गर्जन की आवाज हुई, फिर वापस आसमान की ओर चला गया और फिर नीचे आया और ये 3 बार किया। और जब ये सब हो गया वे आए और पूछा इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये न्याय का एक चिन्ह था। कुछ ही दिनों में पश्चिम की ओर एक भूकंप आने वाला है और ये रुकेगा नहीं। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस डूब जाएंगे, ये नीचे जा रहा है, ये सारा का सारा समुद्र में चला जाएगा। और 2 दिन के पश्चात अलास्का के भूकंप ने अलास्का को हिला दिया। और अंतिम सभा मेरी कैलिफोर्निया में थी जबकि बोल रहा था और मालूम नहीं तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं सड़क पर नहीं पहुंचा। इसने कैलिफोर्निया बताया, कहा कफरनहूम कफरनहूम, वो नगर जो दूतों के नगर के नाम से कहलाता है वो लॉस एंजलिस है। तूने स्वयं को स्वर्ग तक ऊंचा किया परंतु तू नीचे अधलोक तक नीचे लाया जाएगा, क्योंकि यदि वो सामर्थ्य के भरे काम सादों में किए जाते जो तुझ में किए गए तो वो आज तक बना रहता। अब पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी हलचल तड़ातड़ हो रही है, तब यहाँ विज्ञान के अखबार में आया कहाँ ये सारा छलनी हुआ पड़ा है, इसे तो नीचे जाना ही है, वे बस इसे जानते हैं। और आप ध्यान दें कि पानी सॉल्टन सागर में वापस आएगा। लॉस एंजलिस न्याय में नष्ट हो गया, मैंने इसे घटित होने से पहले बता दिया ताकि जब ये हो तो आप जान जाएं। मैंने ये कभी अपने से नहीं कहा और वो मेरे पास कभी ये बताने के लिए नहीं था सिवाय जो घटित हुआ। आपके पास इसका अभिलेख है, ये ठीक बात है। कब मैं नहीं जानता। मैं बाहर निकल गया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या कहा और मैंने सुना वापस जाकर पवित्र शास्त्र खोजा। आप जानते हैं यीशु ने कहा लगभग इन्हीं शब्दों में कफरनहूम के लिए और सदोम और गमोरा ये मिर्सागर की तलहटी में थे मैं समझता हूँ तब। और बाद में लगभग सैकड़ों वर्ष पश्चात कफरनहूम समुद्र में चला गया और ये समुद्र में है। वही परमेश्वर जिसने उस सदोम को उसके पापों के लिए समुद्र में डाल दिया, उसी परमेश्वर ने कफरनहूम को उसके पापों के लिए समुद्र में डाल दिया, वही परमेश्वर लॉस एंजलिस को उसके पापों के कारण समुद्र में डाल देगा। वो भ्रष्ट नगर है। भाई रॉय बॉर्डर्स मृत्यु के लिए डर गए। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है या क्या, मैं नहीं जानता। आइए प्रार्थना करें। प्रभु ये वास्तविक सुनने वालों के लिए गवाही देना अच्छा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे अविश्वास में सहायता करें। और हम ये अनुभव करते हैं कि हम नीचे मार्ग पे जा रहे हैं अब संसार के अंत में, बस किस समय हम नहीं जानते, परंतु दुल्हन का गुप्त उठा लिए जाना इन्हीं दिनों में प्रभु हम उठा लिए जाएंगे, इसके साथ उठा लिए जाएंगे। और हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार करें। बहुत से हैं देखिए यहाँ चरपाइयों पे पड़े हैं, स्ट्रेचरों पर, पुरुष और स्त्रियां जो कि शत्रु से बांधे गए। संभव है लोग वहाँ बैठे हैं, यदि आप उन्हें ना छुएं तो वे हृदय घात से मर जाएंगे, शायद कुछ इनमें से कैंसर से खाए हुए। और पिता हर मनुष्य के हृदय को जानते हैं, आप जानते हैं कि ये सत्य है या नहीं, और हम इन बातों को इसलिए कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि आपने ये कर दिया, आपकी महान सामर्थ्य ने बहुतों को छुड़ा लिया। हम इसके गवाह हैं, यद्यपि वे हमें ये बताने का यत्न करते हैं कि ये बातें घटित नहीं होती, परंतु प्रभु ये होता है, हम गवाह हैं। आज रात्रि मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि कैसे भी आप इन लोगों में विश्वास को बनाए, ताकि इनमें से प्रत्येक छुड़ा लिया जाए, ये सारे बीमार और अपाहिज लोग। प्रभु होने पाए ये बहुत साधारण हो, बस हम जैसे कि हम संसार को वचन सिखाने का यत्न करते हैं, पवित्र आत्मा मेरी गलतियों को ले ले प्रभु और इन लोगों के हृदय में सही कर दे और इसे वास्तविक रात्रि बना दें, ताकि वो स्वयं को प्रत्येक विश्वासी के हृदय में बसा सके। आज रात्रि हम इसे उद्देश्य से बैठे हैं प्रभु, वे जो बचाए हुए नहीं हैं, इस सब के ऊपर तैयार रहें, अब तैयार रहें कि दया का द्वार अब भी खुला है। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम पवित्र वचन खोलने जा रहे हैं कि इससे आरंभ करें। किसी ने यहाँ पुलपिट पर एक नोट रखा है और कहा है कि उन्होंने मेरे लिए भेंट ली है आज रात्रि मेरे लिए, ये आवश्यक नहीं था, ये ना करें, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। एक बार मुझे याद है कि कैलगरी कनाडा में हमने लिया, ये भेंट ली गई थी, भाई जैक मुझे बताने का यत्न कर रहे थे, मेरी पत्नी वहाँ पीछे बैठी थी, वो बालकों को पास पुराने दो कमरे थे, हम उसमें रहा करते थे, उसे दरवाजे पर कंबल टांगना होता था ताकि दरवाजा बंद रहे, ताकि बच्चों को नमोनिया ना हो जाए। और उसने कहा, उसने मुझसे कहा, बोले भाई वर्णम ये ठीक नहीं है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, आपको ये बात याद है, उन्होंने ले लिया, मैं भूल गया कितने हजार डॉलर। और मैंने कहा ओ भाई जैक इसे वापस ले ले, उसने कहा अब हम ये कैसे करेंगे, इसलिए मैंने वो स्थान खरीदा और ये वहाँ परमेश्वर की महिमा और सम्मान के लिए। हमने इसे कुछ वर्षों तक रखा, पत्नी और मैं एक उपहार कलीसिया से लोगों को, और तब मैंने सोचा ये ठीक नहीं जान पड़ता, मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया और ये निश्चित है कि मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा, इसलिए मैं घूमा और इसे ठहरा दिया और आराधनालय को वापस दस्तावेज पत्र में कर दिया, ताकि जब मेरा पूरा हो जाए तब कोई प्रभु का दास यदि कोई कल है तो इसका प्रयोग करेगा। देखा, इसलिए कृपालु मित्रों धन्यवाद, परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष दे। अब याकूब में, याकूब की पुस्तक दूसरा अध्याय, मैं 21वें पद से आरंभ करके पढ़ना चाहता हूँ, और अब मैं थोड़ी देर के लिए शिक्षा और फिर हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे जितनी जल्दी हम कर सकते हैं और जितना अधिक संभव होगा, लोगों को प्रार्थना पंक्ति से होकर निकालेंगे, हम उन्हें भी स्मरण करें। मैं बहन एना जीन और भाई डॉन और उन्हें भूलना नहीं चाहता, मैं सोचता हूं कि वे थाईलैंड में कहीं हैं, क्या नहीं तो कहाँ, बैंकॉक और मिशन कार्य क्षेत्र में। बहुत सी बातें हैं जो आप दिन के समय सोचते हैं, आप उनका उल्लेख लोगों के समक्ष करना चाहते हैं, तब आप जब यहाँ आते हैं आप उन बातों को नहीं सोच सकते, आप सीधे पाठ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ याकूब में दूसरा अध्याय, और अब हम 21 पद से, याकूब के दूसरे अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं और इसका एक भाग पढ़ते हैं, 21वां पद दूसरे अध्याय का। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहराया गया? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब आज रात्रि मेरा विषय, अब अपनी बाइबल पकड़ लें, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे वचन लिख रखे हैं, यदि हमें अधिक देर नहीं हुई तो मैं उनमें से बहुत सो का उल्लेख करूँगा। मेरा विषय ये है, कार्य विश्वास का प्रकटीकरण है। अब इसमें रखें, कार्य विश्वास का प्रकटीकरण है, कार्य दिखाते हैं कि विश्वास ने पहले ही पकड़ बना रखी है, देखा समझे। अब हम इसे चुनते हैं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारी समझने में सहायता कर सकता है। अब जरा ध्यान पूर्वक सुने और हम इसमें संडे स्कूल के समान चलेंगे। यहाँ याकूब अपनी शिक्षा को उत्पत्ति 22:1-9 से प्रकट कर रहा है कि अब्राहम में कैसा मनुष्य दिख पड़ता है। आइए थोड़ा वापस चलें, मेरे पास निशान लगे हुए हैं वचन के, उत्पत्ति 22वें अध्याय में और पहले से 9वें पद तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखिए, उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा वाला था। आप बस आगे बढ़ें, जब परमेश्वर बोलता है आप आगे बढ़ते जाएं, समझे। तो इब्राहिम बेहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कूच करके उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब उसके मस्तिष्क में ये था, वो ऊपर अपने लड़के को घात करने जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये कहा है। परंतु यहाँ पवित्र वचन में देखें, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और दंडवत करेंगे और तुम्हारे पास वापस आते हैं, वो और लड़का। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वो दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्या ही काम है। अब हम यहाँ ये पाते हैं कि याकूब अब्राहम को कामों के द्वारा न्यायोचित ठहरा रहा है। परंतु अब पौलुस रोमियो में रोमियो की पुस्तक 8:4-8 मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगा, केवल थोड़ा ही भाग। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। आपको स्मरण है कि पिछली रात्रि हमने ये शब्द धर्मी ठहराया जाना जान लिया था, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अब पौलुस यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है? जो परमेश्वर ने अब्राहम में देखा। अब देखिए, यदि हम अधिक नहीं घूम रहे हैं, हम वापस उत्पत्ति में जाएंगे, 15वां अध्याय और 6वां पद, 15:6, मैं विश्वास करता हूँ कि ठीक है, हम 5वें से आरंभ करेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब दो व्यक्ति जो विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं, पौलुस अब्राहम को जो परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखा धर्मी ठहराता है, परंतु याकूब अब्राहम को जो मनुष्य अब्राहम में देखता है धर्मी ठहराता है। अब देखिए, याकूब ने कहा वो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरा, पौलुस ने कहा वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। परंतु देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यही जो परमेश्वर ने उसमें देखा उसने इसका विश्वास किया। परंतु तब जब वो इसको ऐसा करने गया, यद्यपि ये पहले ही कर दिया गया, यही जो मनुष्य ने उसमें देखा। और ये ऐसा ही है जैसे ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे काम दर्शाते हैं कि हमारा क्या विश्वास है। परंतु यदि हम वो करने से डरते हैं जो हम विश्वास करते हैं, तो हम इसका विश्वास नहीं करते। देखिए, आपको इसका विश्वास करना ही है। अब्राहम के कार्य उसके विश्वास को दर्शा रहे थे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में था। अब स्मरण रखें, अब्राहम वो 90 वर्ष का था, एक 100 वर्ष का बूढ़ा, और सारा 90 वर्ष की, और अब वे अच्छी बड़ी आयु के थे, बालक उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, बहुत वर्षों से नहीं थी, और वे एक साथ पति पत्नी के समान रहे जब से वे युवा थे और कोई बालक नहीं। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसे बताया जब वो 75 वर्ष का था और सारा 65 की, तुम्हें बालक होने वाला है, और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का विश्वास किया, उसने इसका विश्वास किया। अब देखिए, उसने इस बालक के लिए हर चीज तैयार कर ली। देखिए, यही जो परमेश्वर ने देखा जब उसने परमेश्वर का विश्वास किया, और मनुष्य ने देखा जो उसने विश्वास किया, उसने उसको प्रकट किया, और यही बात जो आज रात्रि कार्य करती है, ऐसे ही ये हमारे साथ है। ये उस पर प्रकट किया गया, ये इस पर प्रकट किया गया था, इसलिए उसने ऐसा विश्वास किया और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि ये हो चुका। अब जरा यहाँ पर थोड़ा रुकें, एक मिनट। हम कभी कभी इसे गलत समझते हैं। लोग उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना पर कार्य करते हैं, ये कार्य नहीं करेगा। अब मैं यहाँ भाई गेरहोल्ट्स के समान हूँ। हम लोग बूढ़े हैं और हम लंबे समय से, और हमने लाभ हानि और सब चीजें देखी हैं। हमने बीमारों के लिए समस्त संसार में प्रार्थना करना, और लोगों की निराशा देखना, और चारों ओर से हैलेलुया सुनना, और फिर ये सब हम इसके द्वारा सीखते हैं। और जब हमने लड़कों के समान ये प्रचार आरंभ किया, भाई गेरहोल्ट्स जैसे एक साथ तैरना आरंभ किया, पहली चीज आप जानते हैं, ये ऐसा होता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, और मैं भाई जैक मेरे साथ सड़क पर चलने के लिए, भाई ब्राउन थे, एक रात से दूसरी रात स्वयं अपने आपे में आने का यत्न करता। मैं वहाँ छोटे बालक के समान खड़ा होता और बस वहीं रहूंगा जब तक कि भाई ब्राउन, मुझे स्मरण है एक रात्रि, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, वहाँ सेंट जोन्स में या कहीं और वो मुझे जगाने को आया। मैं कई दिनों से नहीं सोया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा हूँ, परंतु कहा कि मैंने उसे बताया, रोना आरंभ कर दिया, बोला मैं घर जा रहा हूँ, समझे? क्यों? उसने कहा आप घर नहीं जा सकते, वहाँ नीचे सभा चल रही है। मैंने कहा भाई मैं कुछ मिनटों में तैयार हो जाऊंगा कि घर जाऊँ। देखिए, मैं ये लगभग अपने आपे में नहीं था। देखिए, तब मैं लड़का था। जैसे कि आप तैरना सीख रहे हैं, आप समझते हैं कि आप पानी में छपाके मारते और तालाब के पार चले जाते हैं, और हा 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 हा, मैंने गलती की। अब जब आप तैरना सीख जाते हैं, उसके बाद तो आप छपाके बढ़िया मारते हैं, और ये आपको थकाता नहीं इतना अधिक। देखिए, यही है, आप सीख जाते हैं कि कैसे किया जाता है, और बेकार की चीज छोड़कर इसे अच्छा बनाते हैं, और ये सरल होता है, समझे? एक छोटा लड़का जो कभी नहीं चला, यहाँ इस गलियारे में चलने का यत्न करेगा, वो दर्जनों बार गिरेगा और थक जाएगा इसके पहले कि वो वहाँ पहुँचे। परंतु कोई भी जो चलना जानता है, एक खिलाड़ी, वो सीधा गलियारे में जाएगा, यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं देगा कि ये कर रहा है, वो जो अब उसी में आरंभ करेगा। ठीक यही दिव्य चंगाई को प्रचार करने में है, या कुछ भी। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आप सीखने लगते हैं। यदि आप नहीं सीखते तो कुछ गड़बड़ है। देखिए, आपको सीखना ही है, और आपको सीखना है कि कैसे परमेश्वर को स्वीकार करें, और वास्तव में इसका क्या अर्थ है। कभी कभी कहने के लिए हम अनुमति देते हैं, भाई इस व्यक्ति में पर्याप्त विश्वास नहीं है, इस व्यक्ति ने ये नहीं किया, इसका कोई कारण है। कभी कभी ये अस्वीकृत पाप और आप व्यक्ति पर गैलनों तेल उड़ेल सकते हैं, और जब तक गला ना बैठ जाए चिल्लाते रह सकते हैं। ये शैतान को बिल्कुल नहीं हिलाएगा, नहीं श्रीमान, ये आपको ये स्वीकार करना ही है। विचारों का परखना यही करता है, कहें जाकर इसे ठीक करो, उसे बाहर लाओ। परंतु ये इतनी धीमी गति से कर रहा है, आप देखिए, तब बाकी लोगों का सब टूट जाता है, और वे कहते हैं ओह, मैंने कभी प्रार्थना नहीं करवाई। परंतु हमने इसके लिए एक मार्ग ढूंढना चाहते हैं कि क्या घटित हुआ, दिव्य चंगाई का वो वास्तविक आधार। अब एक वरदान, जैसा कि मैंने गत रात्रि कहा, एक वरदान शानदार चीज है, परंतु आप अपना अनंत गंतव्य वरदानों पर आधारित नहीं कर सकते। आप मुख्य को लघु पर नहीं रख सकते, और वरदान एक छोटा है, और शैतान किसी भी वरदान की नकल कर सकता है, परमेश्वर के वरदान की वो ठीक वैसे ही बना सकता है। देखिए, ठीक वैसे ही, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है। जैसे कि कभी कभी मैं चिल्लाने के लिए दर्शाता हूँ, मैंने प्रेत आत्माओं को चिल्लाते देखा है, अन्य भाषाओं में बोलते हुए, मैंने प्रेत आत्माओं को अन्य भाषाओं में बोलते देखा है। ये वास्तविक नहीं है, परंतु ये इसकी नकल है। आप देखिए, इसे वास्तविक जैसा दिखाता है, और लोग कभी कभी जो अंतर नहीं समझते, इसे वास्तविक घोषित करते हैं, जबकि ये वास्तविक नहीं है। और यही बात वे दिव्य चंगाई के लिए करते हैं, वे सोचते हैं ये कुछ गड़बड़ या कुछ इसी प्रकार का है, ये नहीं है क्या? ये वास्तविक है, शुद्ध विश्वास जिसमें परमेश्वर ने कहा ये सत्य हो, और वो लंगर करता है और जब ये लंगर डालता है तो इसे कोई हिला नहीं सकता, ये वही स्थिर रहेगा, और इसलिए इन बेकार बातों को छांट रहे हैं। अब विश्वास परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन है, वहीं पर मैं टिकना चाहता हूँ, वहाँ एक क्षण, ये प्रकाशन है, उसने ये आप पर अनुग्रह से प्रकाशित किया है, आपने इसमें कुछ नहीं किया, आपने इस विश्वास में कार्य नहीं किया, आपके पास कभी भी विश्वास था, ये आपको परमेश्वर के अनुग्रह से दिया गया और परमेश्वर इसे आप पर प्रकट करता है, इसलिए विश्वास एक प्रकाशन है और परमेश्वर की सारी कलीसिया प्रकाशन पर बनी है। एक बैप्टिस्ट सेवक ने मुझे बताया, अधिक समय नहीं हुआ, उसने कहा मैं प्रकाशन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कहा तो फिर आप बाइबल को स्वीकार नहीं कर सकते, आप मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रकाशन है, वो परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, इसलिए समस्त कलीसिया दिव्य प्रकाशन पर बनी है। यीशु ने कहा, मेरा विश्वास ये पतरस था, कहा उसने कहा लोग मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, वो अपने शिष्यों से बात कर रहा था और किसी ने कहा तू एलिया है और मूसा या भविष्यवक्ताओं में से एक और यरमिया, उसने कहा परंतु तुम क्या कहते हो, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब रोमन कैथोलिक कहती है वो पतरस से बोल रहा था कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रोटेस्टेंटों ने कहा वो इसे स्वयं अपने ऊपर बनाएगा। अब वे ठीक हो सकते हैं, परंतु मेरे लिए दोनों गलत हैं। ये आत्मिक प्रकाशन पर है कि वो कौन था, मांस और लहू ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया पतरस, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये प्रकट किया, और इस चट्टान पर ये प्रकाशन की ये क्या है, इस प्रकाशन पर वो वचन है और समस्त, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते, ये दर्शाता है कि अधलोक के फाटक इसके विरोध में है। हाबिल ने विश्वास के द्वारा प्रकाशन, उन दिनों में बाइबल लिखी नहीं गई थी, हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर को अधिक उत्तम बलिदान चढ़ाया उससे जो केन ने, जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी वो धर्मी था। कैसे विश्वास से, कैसे प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उस पर प्रकट किया गया था कि ये मैदान के फल नहीं ये लहू था। इसी कारण कुछ लोग इसका विश्वास कर सकते हैं और कुछ इसका विश्वास नहीं कर सकते, कुछ इस बनावटी विश्वास का यत्न करते हैं। लोगों की सभा में जहां प्रार्थना पंक्ति चलती है आप कुछ को पाएंगे, आप कहेंगे और वे सब अच्छे लोग थे, उनमें से कुछ बहुत ही यत्न कर रहे थे कि इसका विश्वास करें, स्वयं ही कुछ करने का यत्न कर रहे थे, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, और दूसरे ये अनुग्रह है जो उनको दिया गया। अब वहाँ पर अंतर है, समझे, जो ये करता है, ये वास्तविक प्रकाशन है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है, इसे पहले प्रकट होना ही है। यीशु ने इसे स्पष्ट रूप में दर्शाया जब उसने कहा कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे पहले खींच न ले या पहले मुझे उस पर प्रकट न कर दे। आपको ये पढ़ना चाहिए, ये संत याकूब या संत यूहन्ना 6:44 और 46 तक। उन्हें नहीं मालूम हुआ कि वो कौन था, उन्होंने सोचा ये बस साधारण व्यक्ति है, उन्होंने उसे सोचा ऐसे ही जैसे लोग आज करते हैं, कोई भविष्यवक्ता। वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक साधारण मनुष्य था, परंतु वहाँ इससे कुछ अधिक था। जैसे कि बीती रात्रि बोल रहा था, जब आपको पुस्तक मिले आपको कुछ गड़बड़ी मिलने जा रही है, जो कि मैंने कहा जीवन की दो पुस्तकें, ये एक ही पुस्तक है, परंतु उनमें से एक आपका शारीरिक जन्म, दूसरी वाली आपका आत्मिक जन्म, एक दूसरे की अगुवाई करता है जैसे कि गेहूं की डंडी। अब जब आप कभी मुझसे बातें करते हैं तो आप एक जीवित व्यक्ति के समान बातें करते हैं, परंतु मेरा एक भाग यहाँ है, ये वो व्यक्ति है जिसे नष्ट होना ही है, ये वो पुस्तक है जिसमें से नाम हटता है, परंतु अनंत वाला, पहले से ठहराया हुआ वाला, चुना हुआ, वहाँ से नाम कभी नहीं हट सकता, क्योंकि ये सदा से वही था, इसे कभी भी नहीं हटाया जा सकता। आप इस पुस्तक में ध्यान देंगे, इसलिए ये आपको भ्रम से बचाता है, आप इसको इसी प्रकार पाएंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई वाइल्ड जिसने इसे सही व्याकरण में ढाला है मुझे आज इसे याद दिलाता है। मैंने कहा ये ठीक है, बैप्टिस्ट विश्वास करते हैं दो अलग अलग पुस्तकें हैं, और एक प्रकार से ये दो अलग पुस्तकें हैं, और दूसरे रूप में ये दो अलग पुस्तकें नहीं है। मैं दो अलग लोग हूँ, मैं देह और प्राण और आत्मा हूँ, तीन अलग लोग, परंतु मैं हूँ केवल एक, मुझे जीवित बनाता है, केवल एक ही वास्तविक जीवन की पुस्तक है, जैसे कि एक ही जीवांश है, गेहूं का जो कि डंठल से होता हुआ आता है और फुंदनी से होकर निकलता है और भूसे से होता हुआ और फिर गेहूं में, और इस सब से होते हुए आप कहते हैं अब ये गेहूं उसमें से है, ये गेहूं नहीं ये डंठल है, परंतु कुल मिलाकर ये गेहूं है। देखिए ये गेहूं है क्योंकि ये सब एक फुंदनी है, परंतु गेहूं जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं वो दाना इसके अंत में है। दूसरे तो उसे ले जाने वाले थे, इन्हें तो नष्ट होना ही है। और यही है, एक स्थान पर ऐसा लगता है कि आपका नाम मेमने की पुस्तक से हटाया जा सकता है और दूसरे स्थान पर आप ये नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसा ही है। ये सब इस बड़े प्रकाशन में है जो कि सात मोहरों के खुलने के समय मालूम पड़ा। ये क्यों है, कैसे कुछ लोग इसका विश्वास नहीं कर सकते? यीशु ने कहा कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे ना खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। कोई मनुष्य नहीं समझ सकता वो किसमें से है या ये कैसे है, सिवाय इसके कि ये आप पर परमेश्वर के द्वारा प्रकट ना किया जाए, और फिर इसमें विश्वास आप उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम ये स्पष्ट रूप में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु में प्रकट हुआ, और केवल वे जो पहले से ठहराए गए कि इसे देखें इसे देखेंगे। पवित्र वचन पढ़ने में निश्चित हो जाएं। मैं इसमें छोड़ देता हूँ, संत यूहन्ना 6:44-46 मैंने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि मैंने सोचा संभव है हम कर देंगे, हो सकता है पर्याप्त समय ना हो कि इसे देखें क्योंकि वहाँ घड़ी बस आगे बढ़ रही है, और इसलिए हम आप ध्यान दें, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही पहले उसे ना खींच ले, और सब जो पिता ने मुझे दिया है वे आएंगे, वे इसे पहचानेंगे। कोई दूसरा मनुष्य ये नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मतलब नहीं वो कितना अच्छा है, आप कौन है, ये तो आप पर प्रकट होना ही है, तब आप देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अब यहाँ पहले से ठहराया हुआ वाली योजना स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि दूसरा बीज परमेश्वर का वचन बीज है, और उसके लिए भूमि पहले से तैयार करना। यदि आपने बीज बोया है बस आप उसे भूमि पर फेंक दो, ये कुछ भला ना करेगा, चिड़िया उसे चुग लेगी, आप इसे काटें झाड़ियों में फेंके ये इसे जल्दी ही रोक देगा। यीशु के दृष्टांत ने ये कहा, इसलिए भूमि को पहले तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता अनुग्रह में पहले हृदय को तैयार करता है। उसने आपको सृष्टि के रचने से पहले तैयार किया कि इस युग में उसे ग्रहण करें। वो अपने पूर्व ज्ञान में आपको जानता है और अनंत जीवन के लिए आपको ठहराया, वो आपको जानता है, इसलिए उसने आपको तैयार किया। यही कारण है कि आप इन चीजों से बाहर आ गए और जो आपके पास अब है उसमें आ गए। ये परमेश्वर ही था जो आपको इस स्थान की ओर अगुवाई कर रहा था जहाँ होने के लिए उसने आपको ठहराया। यदि ये भूमि पहले से तैयार ना की गई हो तो ये बढ़ नहीं सकता। यही कारण है कि विश्वास का बीज, जब आप विश्वास को प्रचार कर रहे हैं तो देखिए प्रभु का अंतर, और देखिए क्या घटित होता है, और बाइबल के सारे वरदान कार्य कर रहे हैं, लोग स्वयं से इस कार्य को देखते हैं, ओ हालेलुया मैं इसका विश्वास करता हूँ, और आते हैं और स्वयं को निराशा में पाया। देखिए भूमि को ठहराया जाना है, और आप जानते हैं जब ये इस पर प्रहार करता है, मेरे छोटे उकाब के समान गत रात्रि वो जान गया जब उसने उस माँ की आवाज को सुना, मुर्गी की आवाज और उसके बीच में बहुत अंतर था। देखिए क्योंकि वो अंडे से ही उकाब था, ना कि वो तब ही उकाब बना था, वो सदा से ही उकाब था, और एक मसीही सदा से ही था। यही कारण है तलाक जब आपने छोड़ा, क्योंकि आप इसमें फंसाए गए पहले अभिभावक आदम और हवा के द्वारा। आप स्वभाव से पापी हो गए, आप होना नहीं चाहते थे, परंतु अब आपने सुसमाचार सुन लिया, और विश्वास सुनने से आता है, प्रकाशन सुनने से आता है। आपके अंदर कुछ छोटा सा है, दूसरा व्यक्ति आपके बराबर में बैठा हुआ कहता है मैं इस चीज का विश्वास नहीं करता, निरर्थक, मैं इसका विश्वास नहीं करता, इससे कुछ नहीं। जैसा उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन किया था, वे हंसे और बोले ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। वे जानते थे कि ये एक महान बात जो इनमें हो रही है, क्यों? ये परमेश्वर था जो स्वयं को उन पर व्यक्तिगत दर्शा रहा था, जबकि दूसरे हंसे, ये आनंद कर रहे थे। ये व्यक्तिगत प्रकाशन था जो कि विश्वास है, विश्वास जो प्रकट किया गया। यदि ये विश्वास नहीं था तो ये वहाँ पर नहीं होता, ये विश्वास था। बीज को तो भूमि पहले ही से तैयार चाहिए, इसलिए सब वो जिन्हें पहले से जानता है उसने बुलाया, सबको उसने बुलाया, सब जिन्हें पहले से जाना उसने ठहरा दिया। यदि आप पढ़ना चाहते हैं रोमियो 8:28-34 और इफिसियों 1:1-5, देखिए सब जिन्हें उसने पहले से जाना उसने बुला लिया, सब जिन्हें बुलाया उसने निर्दोष ठहराया, और सब जिन्हें निर्दोष ठहराया उसने पहले ही महिमा प्रदान कर दी। कुछ भी क्रम से बाहर नहीं है, हम सोचते हैं यह है, परंतु पवित्र वचन में देखिए ये ठीक परमेश्वर के वचन के साथ बैठता है, कहा यह होगा। आज हम संदेश को अस्वीकार किया हुआ देखते हैं, क्या ये वो नहीं जो वचन ने कहा कि वे ये करेंगे? निश्चय ही ये सारी चीजें परमेश्वर की ठहराई हुई हैं। वो इस प्रकार आपको प्रसन्न कर देना चाहिए। आज हमारे साथ यही परेशानी है, पुराने मसीहों से बहुत ही अंतर है। जब वास्तविक सच्चा यीशु मसीह का प्रकाशन इमैनुएल के नाते उन पुरुषों के हृदय में रहा, वे मजबूत लोग थे, परंतु आज नामधारियों के द्वारा हमारी पीठ थपथपाई जाती है। ओ मैं आपको बताता हूँ, उनके पास प्रकाशन नहीं था। आप यहाँ पर आए, आप उनके प्रकाशन पर निर्भर कर रहे हैं। यदि उनका प्रकाशन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो ये गलत है, मेरा या किसी का भी। यही जहाँ पर परख होती है, परमेश्वर का वचन बताता है क्या सही और गलत है। किसी भी बीज की अपनी भूमि होनी है, इसलिए सब जिन्हें उसने जाना वो पहले से ही जानता था कि क्या घटित होने जा रहा है। ध्यान दे, यीशु ने फिर कहा बीज के विषय में, कुछ पत्थरों में गिरा, दूसरी मिलीजुली भूमि पर। देखिए जहाँ कांटे, झाड़ियाँ और सब चीजें थी, ये नहीं बढ़ सकता। और दूसरे अच्छी भूमि में, अच्छी भूमि, अच्छी मिट्टी जो कि तैयार की गई थी, पहले ही तैयार थी। सारे मनुष्य यहाँ वो एक चूजे के समान है, वो देख रहा है, ढूंढने का यत्न कर रहा है, वो इसमें यत्न करता है, वो इसमें यत्न करता है, परंतु कुछ देर बाद अचानक एक आवाज स्वर्ग से आती है, वो इसे पहचानता है एकदम, ये परमेश्वर का वचन है। वो इसे जानता है क्योंकि उसके हृदय में कुछ है जो उसे बताया गया था इस विषय में, उस पर प्रकट किया गया। ध्यान दें, भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। कितनी विचित्र बात है, कैसे एक मनुष्य अपनी सही मनोस्थिति में ये कह सकता है? कभी नहीं हुआ कि कुंवारी गर्भवती हुई हो। एक कुंवारी गर्भवती होगी, जब उसे ये कहने में चिंता नहीं, उसने बस ये कहा, वो ये कैसे करने जा रही है ये उसका काम नहीं है, ये कहना है जो परमेश्वर ने कहा, वो ये करने जा रहा है। परमेश्वर ने ये उस पर प्रकट किया, उसे दर्शन दिखाया, इसे प्रकट किया, और ये ठीक था। उसी परमेश्वर जिसने मुझे बताया कि एक छोटा बालक उस पुरुष के द्वारा जन्म लेगा जिसके बालक नहीं हो सकता था, एक लड़की जैसे दूसरे और आदि, ये कितना विचित्र है। जब डॉक्टर कहता है ये नहीं हो सकता, परंतु जब परमेश्वर कहता है ये होने जा रहा है, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का वचन जो गिरता है। स्मरण रखें, भविष्यवक्ता वहाँ खड़ा हुआ है और वचन आया, जैसे परमेश्वर उत्पत्ति 1 में उसने कहा उजियाला हो जा, ये हो जाए, वो हो जाए, मनुष्य को अपनी छवि पर बनाया, परमेश्वर की शक्ल पर उसने उन्हें बनाया, नर और नारी, और अभी पृथ्वी पर कुछ नहीं था। तब यहाँ हम उत्पत्ति में 2 में पाते हैं, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य नहीं था सृष्टि के बनाने के बाद। ये क्या था? ये उसके वचन, वो ये बोल रहा था, और जब वो बोला उसने कहा उजियाला हो जाए। संभव है उसके कहने के 800 वर्षों बाद भी उजियाला ना हुआ हो, कोई उजियाला ना हुआ, परंतु उसने ये कहा, और जितने समय उसने ये कहा कि खजूर का पेड़ हो जाए, बांज का वृक्ष हो जाए, ये हो जाए, वे बीज जल के नीचे बन रहे थे, ये ठीक बात है। और ऋतु और समय में, अपनी ही ऋतु में ये आया, और ये गिर नहीं सकता, ये परमेश्वर का वचन है, ये असफल नहीं हो सकता, ये प्रकट कर दिया गया। अब एक दिन परमेश्वर ने मनुष्य से आमने सामने बात की, परंतु मूसा के समय में जब आग गिर रही थी, उन्होंने कहा परमेश्वर ही, यानी मूसा ही बोले, न कि परमेश्वर, हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा मैं उनसे इस प्रकार बातें नहीं करूंगा, मैं उनके लिए भविष्यवक्ता उठा खड़ा करूंगा। इसी प्रकार से सदा परमेश्वर का विधान था। अब यहाँ भविष्यवक्ता खड़ा है, अब वो प्रेरणा में है, वो अपनी बुद्धिमानी के विषय में सही सोच रहा था। अब एक मिनट रुकिए, यदि मैं ये कहूंगा, भाई आप लोग जानते हैं कि लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। देखिए ये उसका ज्ञान है, यहाँ ये शैतान की सुन रहा है, जैसे कि हवा ने किया। और जब तक डॉक्टर ये कहता रहता है आप ठीक नहीं हो सकते, आप चंगे नहीं हो सकते, आप ये वो नहीं कर सकते, जब तक आप ये सुनते हैं तो बीज कभी भी सही उस प्रकार की भूमि में नहीं गिरेगा और कुछ भला करेगा, ये नहीं कर सकता। परंतु जब कुछ पूरी रीति से नष्ट होकर और ये उस तैयार भूमि पर गिरता है, तो उसे कोई और चीज नष्ट नहीं कर सकती। अब कोई मतलब नहीं ये कितना समय लेता है, ये होकर रहेगा। अब उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्या आपको मालूम है इसके घटित होने के 800 वर्ष पहले कहा? परमेश्वर ने स्त्री को पहले से ही जाना कि वो कौन होगी, उसका क्या नाम था, वो बीज कहाँ गिरेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? निश्चय ही उसने किया, और एक स्वाभाविक गर्भ से उसका महान आश्चर्यकर्म होगा। परमेश्वर को इस विषय में मालूम था, उसने बस इसे अपने भविष्यद्वक्ता पर प्रकट किया जो कि आज्ञाकारी था, और वचन बोला। यहाँ तक कि इस विषय में बिना सोचे समझे कि ये क्या था, उसने बस ये कहा। उसने कभी भी तर्क करने का यत्न नहीं किया। यदि आप तर्क करने का यत्न करते हैं, क्या हो यदि ये मनुष्य या ये स्त्री, ये मनुष्य जो यहाँ बैठा हुआ है, या ये कोई तर्क करने का यत्न करे। अब मैं इतने वर्षों से अपाहिज हूँ, डॉक्टर कहता है कोई भी संभावना नहीं है। भाई हो सकता है, जहाँ तक वो जानता हो ये सत्य है, परंतु यदि कुछ उन झाड़ियों को तोड़ सकता है, यदि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, न कि प्रचारक कोई और नहीं, परंतु परमेश्वर को आपके हृदय में उस प्रकाशन को डालना है कि मैं चंगा होने जा रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं है जो आपको वहाँ बैठे रहने दे। आपको कोई वहाँ नहीं रोक सकता, आप चंगे होने जा रहे हैं। परंतु जब तक ये नहीं होता, तो आप तब तक ठीक वहीं बैठे हैं जहाँ डॉक्टर कहता है कि बैठे रहो, जब तक ये घटित नहीं होता। इसे प्रकट होना ही है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि इसे प्रकट करे। अब ध्यान दें, अब परमेश्वर को मालूम था कि ये स्त्री वहाँ पर आएगी। ध्यान दें, यशाया, वहाँ कोई प्रश्न नहीं था। यशाया ने नहीं कहा प्रभु एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपने मुझसे क्या कहा, एक कुंवारी गर्भवती होने जा रही है, अब रुके पिता, ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई। वो झिझका नहीं, उसने बस कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। ठीक है, मरियम पर ध्यान दें। अब प्रभु एक मिनट रुकें, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी मनुष्य को नहीं जाना, ये तो असंभव है, इस प्रकार तो कभी नहीं हुआ। ओ नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मुझे कैसे बालक उत्पन्न होने जा रहा है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, इसलिए ये नहीं हो सकता। ओ सरदूत, तू गलती कर रहा है, तुझे दृष्टि भ्रम हुआ, तू जानता है मेरी कलीसिया कहती है वे दिन बीत गए, नहीं ये कभी भी ऐसा स्थान पर नहीं गिरेगा। मरियम ने कभी प्रश्न नहीं किया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, इस प्रकार से ये होने जा रहा है। उसने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, कोई प्रश्न नहीं। देखिए यशाया, जब परमेश्वर ने विचार में यशाया के हृदय में वचन उत्पन्न किया, प्रकाशन, ये सही भूमि में गिरा। ये एक भविष्यद्वक्ता था, इस भविष्यद्वक्ता ने किसी मनुष्य की बुद्धि की चिंता नहीं की, इसने किसी मनुष्य की चतुराई की चिंता नहीं की, उसने किसी व्यक्ति की चिंता नहीं की, वो परमेश्वर की समर्पित प्रणाली था। और परमेश्वर बोला और वो बोला, बस यही, चाहे आघात पहुंचाए या न पहुंचाए, चाहे पागल लगे चाहे पागलपन न लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये परमेश्वर था न कि मनुष्य। और जब वो वचन आया, अब ये बीज हो गया, इसे कहीं तो गिरना ही है, यदि ये परमेश्वर ने कहा है तो इसे कहीं गर्भ में ही गिरना है, जैसा कि उसने कहा उनके लिए सारी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं। यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, तुम वो पा सकते हो जो तुमने कहा। देखिए इसे कहीं तो होना ही है, ये ठीक बात है। ध्यान दें, हम पाते हैं यशाया ने यहाँ कहा कुंवारी मरियम, जैसे ही भूमि पहले ही तोड़ी गई थी, वो एक कुंवारी थी, वो इधर उधर नहीं भागी, भूमि पहले ही तैयार हो गई थी या परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से ठहरा ली गई थी। बोला भी गया वो एक कुंवारी थी, तभी परमेश्वर को मालूम था कि उसका क्या नाम होगा, उसका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में था। तब ये प्रमाणित किया गया था, तब मनुष्य को प्रकटीकरण दिखाया गया इसका कार्य के द्वारा, जबकि ये पहले ही हो गया था। अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं निश्चय ही ये हो गया था, क्योंकि हम किए गए कार्य को जो हो गया है देखते हैं। नूह के कार्य मनुष्य पर प्रकट किए गए कि उसका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा में क्या था। अब परमेश्वर नूह से मिला और उसने कहा नूह वर्षा होने जा रही है, मैं सारे संसार को जल से नष्ट करने जा रहा हूँ। अब कभी भी वर्षा नहीं हुई थी, ये असंभव ना थी। अब नूह कहा इस नाव की नाव बना जिसके विषय में मैं तुझे बताऊंगा, और वो बड़ा ही होने के नाते वो कार्य पर गया और अपना वसूला लिया और चीज तख्ता काटने को और शित्तीम लकड़ी के साथ लगाने को, और जैसा उसने कहा राल को लगाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों ने उसके विषय में क्या सोचा? उन्होंने कहा, वास्तव में ये मनुष्य पागल है, क्योंकि ये कहता है ये आकाश से जल लाने वाला है और वहाँ कोई जल नहीं है। परंतु आप देखिए, नू ने इस विषय में नहीं सोचा। उसका ये कार्य लोगों पर उसके विश्वास को प्रकट कर रहा था कि जो परमेश्वर ने कहा वो घटित होगा। यही कारण है वास्तविक मसीह स्वयं को संसार की हर चीज से अलग करता है सिवाय परमेश्वर के वचन के। कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है। उसने अलग किया क्योंकि वो ऐसे ही नहीं कर रहा था। यदि नहीं तो उसका कार्य इतना नहीं होता कि सब पर प्रकट हो जाता। वो वापस मुड़कर और एक और निकल जाता, इसकी या उसकी सदस्य ले लेता और आरंभ करता। वो दर्शाएगा कि वो क्या है। परंतु यदि वो वास्तविक है, यदि परमेश्वर का वचन उसमें डाला गया है, तो ये अपने ही प्रकार का उगाएगा। आप देखेंगे मनुष्य स्वयं को उस महान घड़ी के लिए तैयार कर रहा है। देखिए, नूह ने ऐसा ही किया। मूसा अपने हाथ में छड़ी लिए हुए लोगों को फिरौन से लेने आया। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मूसा बाइबल ने कहा कि उसे मिस्रियों की सारी बुद्धिमानी सिखाई गई थी। वो तेज था, वो उनकी बुद्धिमानी के की चीजें सीख सकता था। उसे उनका सारा ज्ञान सिखाया गया था। उसे आवश्यकता नहीं थी कि अपनी शिक्षा को पकड़े रहे। अब एक जंगल में एक व्यक्ति के विषय में सोचें, उस सारी शिक्षा के साथ, और फिर परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ और कहा, मूसा इस छड़ी को अपने हाथ में ले और मिस्र को चला जा और मेरे बालकों को इस छड़ी के साथ जो तेरे हाथ में है ले आ, सारी बातों को इसी छड़ी से साफ कर दे। अब क्या हो यदि मूसा ने ये कहा होता, श्रीमान एक मिनट, मैंने सोचा कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर रहा था, ये महान मैं हूँ जो तू कहता है कि तू है। अब कैसे इस संसार में मैं छोटी पुरानी छड़ी को लूं जो यहाँ मेरे हाथ में है और लाखों लोगों को की सेना जो भालों और योद्धाओं से सुसज्जित है जीत लूं, और मैं योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक चरवाहा हूँ, मैं कैसे कभी ये कर सकता हूँ? कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्यों? क्यों? भूमि उसके हृदय में थी। वो पहले से ठहराया हुआ व्यक्ति था। वरदान और बुलाहट बिना प्राश्चित के हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि वो ये करेगा और वहाँ भूमि तैयार थी। और मूसा ने छड़ी ली और वहाँ चला गया और उस राष्ट्र को राष्ट्र में से निकाला। जब वो उस छड़ी को अपने हाथ में लिए हुए आया और फिरौन को बताया, उन्हें जाने दे। फिरौन ने मूसा में कार्यों को देखा जो कि वो करने जा रहा था। उसके लिए उसमें विश्वास था या करने का यत्न कर रहा था। उसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास था जिसने प्रतिज्ञा की थी। वो उसे लेने चला गया और किसी और व्यक्ति ने ये नहीं किया था और न ही कोई दूसरा व्यक्ति इसे कर सकता था। वो इसे करने के लिए ठहराया गया था। परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को बता दिया था कि ये जो होगा, और जब प्रतिज्ञा का समय निकट आया तो एक छोटा लड़का जन्मा, एक सुंदर बालक, और माता पिता अमराम और यकोबेद राजा की आज्ञा से नहीं डरे। देखिए, वहाँ कुछ था, भूमि पहले ही तैयार थी। ओ परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ आज रात्रि मैं भूमि को तैयार करने पर बोल रहा हूँ। यदि बीज सही स्थान पर गिर सकता है और ये कुछ, यदि ये नहीं तो ये घटित नहीं होगा। ये वही बात है वे कहते हैं, भाई बहनों इस प्रकार की बात हमसे मत कहो। यदि ये करता है तो ये मसीहत से भी ले जाता। देखिए, आप किसी भी चीज की नकल कर सकते हैं, परंतु यदि ये वास्तव में गिरता है, परमेश्वर का वचन सही प्रकार की भूमि में गिरता है, तो ये अपने ही प्रकार का ले आता है। इसे करना है क्योंकि ये एक बीज है। नूह, मूसा, उसके कार्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास का प्रकट होना, जिसका उसने विश्वास किया। फिर उन्होंने एक मनुष्य को देख सकता था कि वो क्या था, न कि वो ये नहीं देख सकता था कि मूसा ये कैसे करने जा रहा है, परंतु वो जान गया, मूसा ने विश्वास किया कि वो किस विषय में बात कर रहा है। या फिर वो छड़ी को हाथ में लिए हुए महल में ना खड़ा होता, कहा, इस छड़ी के द्वारा मैं तुझसे उन सबको निकलवाऊंगा। एक बूढ़ा मनुष्य 80 वर्ष का, खिलाड़ी नहीं, एक बूढ़ा मनुष्य झुके हुए कंधे, दाढ़ी नीचे लटक रही है, संभवतः कमर तक सफेद बाल यदि उसके थे, और वह छड़ी उसके हाथ में कह रहा है, मैं उन्हें निकालने जा रहा हूँ, लोगों को जाने दे, यहोवा यूं कहता है, और यदि तू ये नहीं करता है तो परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। क्यों? यही है। क्या वो डरा था? क्यों? बस एक तीर, एक भाला, कोई भी चीज उसका अंत कर सकती थी। वो निडर था, वो ठीक जानता था कि वो कहाँ पर खड़ा है। फिरौन, परमेश्वर तुझे मारेगा। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया कि तू इस पहाड़ पर फिर आएगा। और वो जान गया कि वो वहाँ जा रहा है। हालेलुया, हम भी जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं इस यात्रा के अंत में। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, नदी के पार एक देश है। अपनी गवाही में निडर बनो। आमीन। यदि ये आप पर प्रकट कर दिया, आप निडर हैं। आप चिंता नहीं करते यदि सारा संसार वे क्या कहते हैं। आप निडर हैं। जब ये आप पर प्रकट हो गया, ये सत्य परमेश्वर के पास से आ रहा है, तब आप निडर हो जाते हैं। यदि नहीं तो आप नहीं हो सकते। दाऊद चरवाई की गोफन के साथ, उसने इज़राइल की समस्त सेना पर प्रकट कर दिया कि जो उनका विश्वास उनके परमेश्वर में था। अब दूसरी ओर गोलियत था और वो वहाँ खड़ा हुआ और अपनी डींग मारी। दाऊद से कई गुना बड़ा, उसकी उंगलियाँ 14 इंच की थीं। वो एक दानव था, बड़ा लंबा चौड़ा फिलिस्तीनी दैत्य। और यहाँ दाऊद था, छोटा सा, वो सेना के लिए भी बहुत छोटा था। बहुत कुछ नाटा, वे उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके भाई वहाँ सेना में थे। और फिर गोलियत अपनी डींगे मार रहा था। परंतु दाऊद, अब स्मरण रखें, दाऊद पर यह प्रकट कर दिया गया था। उसने सोचा, यहाँ जीवते परमेश्वर की सेना है, अपने ही देश में खड़ी है और वहाँ खतना रहित डींगे मार रहा है। हम उसे कैंसर कहेंगे, आज रात्रि उसे लकवा कहेंगे। क्यों? दाऊद का उससे किसी भी प्रकार का मेल नहीं था, किसी भी हथियार के साथ उसका कोई मेल नहीं। उस व्यक्ति के कंधे 10-12 फीट चौड़े हों, हो सकता है संभव वो 14-15 फुट ऊंचा सा खड़ा हो, एक भाला जुलाई की डोंगी के समान, संभवतः 20 फीट लंबी उसके ऊपर का ब्लेड हो सकता है, 4 फुट चौड़ा हो। और एक छोटा दाऊद, छोटे से चमड़े का टुकड़ा 2 रस्सियों से बंधा हुआ, उसके साथ खड़ा हो, जो कि बकरी या भेड़ की खाल का हो। परंतु उस पर यह प्रकट हो गया था, प्रकाशन उसको मिला। आमीन। उसने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया, जिसने मुझे सिंह के पंजे से छुड़ाया, तो वो इस खतना रहित को मेरे हाथ में कितना कर देगा। उसके भाई इससे अधिक योग्य थे कि ये करें। शाऊल के कंधे उसकी सारी सेना के ऊपर थे। परंतु आप देखते हैं, ये उन पर प्रकट नहीं हुआ। आमीन। यही है ये। उन्होंने विश्वास किया कि ये किया जा सकता है, उन्होंने किया, विश्वास किया कि परमेश्वर कर सकता है। परंतु उन पर ये प्रकाशन नहीं था, परंतु ये दाऊद पर प्रकट किया गया। अब वहाँ यही भिन्नता थी। वहीं पर यदि ये पूर्ण रीति से आप पर प्रकट हो गया कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, आप इसे लेने जा रहे हैं, तो आप इसे पाने जा रहे हैं। मैं चिंता नहीं करता कि आपके साथ क्या है, क्या अजीब बात है। ये दाऊद और गोलियत से बुरा हो सकता है, परंतु यदि ये आप पर प्रकट हो गया, और जब ये प्रकट हो गया, दाऊद निडर हो गया। उसने कहा, मैं आज तेरा सिर काट दूंगा। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, अनुग्रह के द्वारा संकट की घड़ी में जब निर्णय लेना होता है, वही परमेश्वर जिसने उस दिन अनुग्रह उत्पन्न किया और विश्वास का बीज उस छोटे से झुके से दिखने वाले लड़के में डाला, उसके हृदय में होकर वही परमेश्वर इस संकट की घड़ी में उस स्त्री को पहिए वाली कुर्सी से उठा सकता है। वो पुरुष, ये महिला, यहाँ पर वो बालक, ये छोटा सा बीज विश्वास का आप पर प्रकट किया गया। तब मैं चिंता नहीं करता ये कितना समय लेता है। अब उस दैत्य पे ध्यान दें, उस ओर इसका विश्वास नहीं किया गया, ना ही कैंसर करेगा। वो हंसा, उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? तुमने इस बालक को मुझसे लड़ने को भेजा है? कहा, मैं तुझे अपने भाले की नोक पर उठा दूंगा और चिड़ियों को तेरा सारा मांस खाने को दूंगा। क्यों? उसके पास सब था, सब कुछ उसके पक्ष में। परंतु आप देखिए, इससे दाऊद तनक भी विचलित ना हुआ। क्यों? उस पर प्रकट कर दिया गया था, उसे उसमें जो वो कर रहा था विश्वास था। वो जान गया कि वो इसे करने जा रहा है और उसने ये किया, क्योंकि उस पर ये प्रकट किया गया और वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा है। और यदि परमेश्वर जरा सा बोला कि आज रात्रि तुम्हारे हृदय के भीतर कि तुम अब पलंग पे पड़े रहने वाले नहीं, तुम कुर्सी पर बैठे रहने वाले नहीं, तुम चंगे होने वाले हो, कोई भी चीज आपके मस्तिष्क को बदल नहीं सकती। परंतु जब तक ये नहीं होता, हर प्रचारक संसार में प्रार्थना कर सकता है। मैं नहीं कहता कि आपकी सहायता नहीं करेगा, ये करेगा, ये आपका साहस बढ़ाएगा। परंतु जब तक वो विश्वास नहीं होता, देखिए, चंगाई की सामर्थ्य आपके अंदर है, ये प्रचारक में से नहीं आती, ये आपके पास प्रकाशन के द्वारा, विश्वास के द्वारा आती है, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु ने कहा मेरा आत्मा अनुग्रह के द्वारा ये आप पर प्रकट होता है और कोई इसे ले नहीं सकता, विश्वास के द्वारा प्रकाशन। तब दाऊद को इसे कार्यों से सिद्ध करना है। अब उनमें से कुछ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम नटखट हो। उसके भाई ने कहा, तू यहाँ लड़ाई देखने आया है, अब तू वहीं जा जहाँ भेड़े हैं, वापस भाग जा। उसने कहा, मुझे शाऊल से बातें करने दो, वो जनरल, आप समझे। और शाऊल ने कहा, अपुत्र मैं तेरे साहस की सराहना करता हूँ, परंतु तू देख, तू कुछ नहीं, केवल एक युवा है, वो अपने लड़कपन से योद्धा है, तेरी उसके साथ कोई तुलना नहीं। उसने कहा, मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था। वो इसे किसी आधारित पर कर सकता था। आमीन। ओ भाई, ओ परमेश्वर, और परमेश्वर जिसने आपका प्राण बचाया, क्या आपकी देह को चंगा नहीं कर सकता? ये ठीक वैसा ही है, आप पर प्रकट करता है, वो आपका चंगा करने हारा है, जैसे वो आपको बचाने वाला है, समझे। परंतु इसे पहले प्रकट होना है, यही अंतर है। उसके पास उसके विश्वास के लिए आधार था। कहा, अब ये पहले कभी नहीं हुआ, परंतु कहा, वही परमेश्वर जिसने मुझे सिंह के पंजे से बचाया, मुझे खतना रहित फिलिस्तीनी के हाथों से बचाएगा। दाऊद, तूने कैसे जाना? मैं इसका विश्वास करता हूँ, क्यों? ये मुझ पर प्रकट किया गया। और उसने कहा, वो जानता था कि वो किस विषय में बातें कर रहा था, क्योंकि जब उस दैत्य ने कहा, मैं तुझे चिड़ियों को खिला दूंगा, उसने कहा, मैं तेरा सिर काटने जा रहा हूँ। यही भिन्नता है, उसने ये किया। समसून एक दिन पकड़ा गया बड़े मैदान में, और हजारों फिलिस्तीनी उस पर आ पड़े, और उसने भूमि पर देखा जहाँ खच्चर मर गया था, और उसने पुराना जबड़ा उठाया, जबड़े की हड्डी सूखी हुई थी जितनी हो सकती थी, और फिलिस्तीनियों को दौड़ाया, उनके सर पर ये पुरानी हड्डी खच्चर की, उससे वार किया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनमें से एक दांत भी न गिरा। और फिलिस्तीनियों के टोप लगभग इंच भर मोटे, क्योंकि उन दिनों में वे मुगदर से एक दूसरे पर वार करते थे, अपने को एक दूसरे के सिर पर वार से बचाने के लिए। परंतु उसने खच्चर की जबड़े की हड्डी ली और हजारों फिलिस्तीनियों को पीटा, और जबड़ा कभी नहीं टूटा। वो उन पर इस प्रकार से वार करता रहा, जैसे ही वे आते बाकी उनमें से चट्टानों में भाग गए, वे उससे भाग रहे थे, क्यों? उसने इसका विश्वास किया। कभी कभी निश्चय ही, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उस स्पंदन पर कार्य करें, वे अल्पक्षण, जैसे यहोशू ने किया, जैसे मरियम मगदलीनी ने किया, और उन सब ने, बस वो क्षण जब आप पर कुछ प्रकट किया जाता है, झपट लें, उसे पकड़ लें, उस अल्प क्षण को। जी हाँ, उस पर यह प्रकट किया गया, वो उन हजारों फिलिस्तीनियों का मुकाबला करने को गया। अब आप क्या सोचते हैं, जब फिलिस्तीनियों ने कहा, अब देखो वो आ रहा है, वो छोटू केवल 4.5 फुट का, इतना ही है, आरंभ से 7 लटे पीछे लटक रही हैं, जैसे माता का दुलारा हो, खच्चर के जबड़े के साथ आया, हमें देखो, हम इतनी बड़ी सेना है, क्या ये हास्यपद नहीं? परंतु वो क्या कर रहा था? वो फिलिस्तीनियों पर यह प्रकट कर रहा था कि उस पर परमेश्वर के द्वारा क्या प्रकट हुआ। उसने जबड़े की हड्डी उठाई और निकला, क्योंकि यही जो उसने हाथ में पकड़ा, उसने ये हाथ में लिया, यही जो उसने विश्वास किया था, वो ये कर सका। और ऐसा करने के द्वारा वो फिलिस्तीनियों पर यह प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर ने उसके हृदय में करने के लिए क्या डाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपना विश्वास कामों से प्रकट किया, और जब उसने कहा, वहाँ अब तुम्हारे बीच में एक खड़ा है, इस पर जरा सोचें। संत यूहन्ना, मेरे पास वचन है, संत यूहन्ना 1:26। उन्होंने कहा, तू कहता है मसीह आ रहा है, क्यों? कहा, मनुष्य तेरे साथ क्या मामला है, हम उसकी प्रतीक्षा हजारों वर्ष से कर रहे हैं। उसने कहा, वो अब ठीक तुम्हारे मध्य में खड़ा है। हालेलुया, ऐसा ही वो आज रात्रि है। उसने अपना विश्वास प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि ये उस पर प्रकट किया गया था। वो जानता था कि वो मसीह को बपतिस्मा देगा। वो मनुष्य 30 वर्ष का था, उसे मालूम था कि उसे वहीं कहीं होना चाहिए। वो ये कभी नहीं जान पाया कि वो कौन था, और वो ठीक वहाँ पर खड़ा था उनके मध्य में। उसने कहा, एक तुम्हारे मध्य में खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, और मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूते का तस्मा खोलूं, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और अब वो ठीक तुम्हारे बीच में है। उसने ये प्रकट किया उसका विश्वास, क्योंकि वो जान गया था उसके दिन में वो उसे देखेगा और परमेश्वर का मसीह को बपतिस्मा देगा। इसलिए आप देखिए, लोग उस पर वो भाव देख सके। मार्ग पर वो प्रचार कर रहा था और जिस प्रकार वो व्यवहार कर रहा था, वो ये प्रकट कर रहा था कि उसके पास सच्चा प्रकाशन परमेश्वर की ओर से था। अब ये सिद्ध करने के लिए कि ये सत्य था, मसीह भीड़ में से निकलता हुआ आया। एक साधारण नबी युवक वहाँ से चलता हुआ आया, दूसरों के समान कपड़े पहने हुए। यहूदा ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा लिए जाता है, तू इसे कैसे जानता है? उसने कहा, वो जिसने मुझे जंगल में कहा, जिसके ऊपर तू आत्मा उतरते देखे, वही होगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखिए, वो उसे जानता था क्योंकि वहाँ उस समय के लिए चिन्ह होना था। क्या आप इसे समझ रहे हैं? यूहन्ना उस घड़ी के विषय में जानता था क्योंकि वो भविष्य रखता था। ये उस पर प्रकट किया गया कि वो उस समय के विषय में जानेगा, वो एक चिन्ह देखेगा। और जब उसने वो चिन्ह देखा, उसने कहा, वो तुम्हारे बीच में खड़ा है। वो जानता था कि ये वहाँ पर है। ओ, मैं चिन्ह देखता हूँ कि अंत समय यहाँ पर मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनकी प्रतिज्ञा हुई है। इस अंत के समय के संदेश के लिए घटित हो रहा है, खुल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वचन ने कहा। और मैं जानता हूँ कि समय निकट है। मैं ये बिना झिझक के कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत समीप है, क्योंकि मैं चिन्हों को देखता हूँ जो उसने कहा कि घटित होगा ठीक उस समय से पहले। अब यह घटित होने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने जो उस पर प्रकट किया था, यूहन्ना ने उसमें अपना विश्वास प्रकट किया। इसलिए कार्य विश्वास की गवाही है। जब वे आपको चंगा हुए के समान व्यवहार करते देखते हैं, तब वे जान जाते हैं कि आप में विश्वास है कि आप चंगे हो गए हैं। गवाही क्या कहती है? ये कह रही है कि अब ये मेरे पास है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा ग्रहण की है। ये अब मुझ में कार्य कर रही है, मैं इसके घटित होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ओ देखिए, यही आपके कार्य करते हैं भाई। निश्चय ही या कुछ समय पहले अपनी अंतिम अफ्रीका यात्रा के पश्चात में इस वसंत में वहाँ पर था, परंतु इसके पहले की यात्रा वहाँ एक छोटा बालक था जिसका पाँव मोटा था और एक पाँव दूसरे पाँव से छोटा था। इसने जीवन में कभी भी जूता नहीं पहना और ये बहुत ही बुरी तरह मुड़ा तोड़ा था। और उस रात्रि मैंने बालक के लिए प्रार्थना करी, उन्होंने देखा और उन चीजों को होते देखा। उन्होंने बालक के लिए प्रार्थना की और अगली सुबह मैं गया एक जूते की दुकान के पास से निकला और मैं उसमें गया और वहाँ उस व्यक्ति को बालक के पहनने के लिए जूता का जोड़ा खरीद रहा था। उसने इसका विश्वास किया। यहाँ इस व्यक्ति के समान जिसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसको बालक देगा, निश्चय ही उसने विश्वास किया कि ये होने जा रहा है और इसके लिए तैयार हो गया। मैं तैयारी कर रहा हूँ। यद्यपि कोई भौतिक परिणाम अभी नहीं दिखाई पड़ा, परंतु इससे तनिक भी अंतर ना पड़ा। उसने इसका अब्राहम के समान विश्वास किया, किसी भी वस्तु को बोला, यद्यपि वो वहाँ पर ऐसा नहीं था। इसलिए यदि आपकी बुद्धि आपको बताती है, ओ यहाँ पर वो करारी चोट है, यदि आपकी बुद्धि ये बताती है ये सत्य है, परमेश्वर बीमारी का चंगा करने वाला है, आपका मस्तिष्क गवाही दे सकता है और ये सत्य है। परंतु यदि वहाँ तैयार भूमि नहीं है आपके हृदय में, विश्वास को उसमें गिरना है कि इसे प्रकट करे, ये घटित नहीं होगा। कोई मतलब नहीं कितना ही ये बाहरी व्यक्ति इस पर वचन के साथ तर्क कर सकता है और कहता है ये ठीक है, ये अब भी इसे ठीक नहीं करता। कितने टेपों को लेते हैं? क्या आपको मेरा उपदेश मिला जो अधिक समय नहीं हुआ, अंत समय के अभिषेक? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? देखिए, इसमें कहा है मसीह विरोधी होंगे, मसीह विरोधी, यदि हो सके तो चुनावों को बहका देंगे। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है, वे चुने हुए हैं, समझे? ये ठीक है, परंतु उसने कहा अभिषिक्त किए हुए। देखिए, मसीह का अर्थ अभिषिक्त किया हुआ, परंतु ये विरोधी थे, वे चुने हुए थे, परंतु विरोधी मसीह के विरोध में अपनी शिक्षा। अब ये कुछ भी कर सकते थे जो वे बाकी कर सकते थे। अब याद रखें, आप तीन के चक्कर में हैं, परंतु आप एक व्यक्ति हैं, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन का चक्र, परंतु एक व्यक्ति, तीन गुण एक ही परमेश्वर के, पिता का गुण जैसे तीन कार्यस्थल पितृत्व पुत्रता और पवित्र आत्मा और आप देह आत्मा और प्राण। अब देह के बाहर इसमें पांच भीतर आने के द्वार हैं ताकि अपने पृथ्वी के घर से संपर्क करें, देखना चखना स्पर्श सूंघना और सुनना। भीतर में जो आत्मा है इसके पांच इंद्रियां हैं विवेक और प्रेम और आदि आदि, परंतु इसके भीतर प्राण में एक ही चीज है जहां आप रहते हैं। आत्मा यहां आ सकता है और आपसे निश्चित चीज करवाने के लिए आपको अभिषेक करता है और आप इसे करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बच गए। इस पर विचार करें, कैफा ने भविष्यवाणी की, यहूदा ने शैतान निकाले, देखिए आत्मा ने उसका अभिषेक किया। ये वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पे पड़ती है, झाड़ियां भी गेहूं के संग आनंद कर सकती है, परंतु ये क्या है जो भीतर बसा हुआ है, ये जहां आप बुद्धि से इसे स्वीकार कर सकते हैं, कहते हैं ओ निश्चय ही ये अच्छा दिखाई पड़ता है, मैं विश्वास करता हूँ, ये अब भी इसे नहीं करता, नहीं श्रीमान। और आत्मा वास्तव में इसकी गवाही दे सकता है और फिर भी ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि वो प्राण परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, ये सारी नकलें यहाँ कर सकता है परंतु ये वास्तविक नहीं हो सकता। आप चंगाई का व्यवहार कर सकते हैं, आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि ये आपके पास है, आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे आपने पा लिया, मसीह ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि वे मसीही हैं और करते हैं और इसमें अच्छे होते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे बच गए। ये बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा वहाँ हो सकता है, वास्तविक मूल आत्मा पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे सकता है, अब भी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बच गए। ये वो भीतर का प्राण है जो कभी नहीं मरता, इसमें अनंत जीवन है, ये सदा से अनंत जीवन था, समझे। ये परमेश्वर से आता है, ये परमेश्वर के पास जाता है, ये प्राण है। अब इस पर ध्यान दे, इसे होना ही है। पांच FAITH बाहर आत्मा, JESUS भीतर, आपके अंदर, आप YOU समझे। इस प्रकार से यहाँ खड़ा है, आपको देख रहा है, मैं आप में से एक को भी नहीं जानता, आत्मा मुझे अभिषेक कर सकता है, मैं अब भी आप में से किसी को नहीं जानता, परंतु जब भीतर के भीतर टूटता है जो परमेश्वर है, यही जहां बाहर वाला तर्क कर सकता है। आप एक मनुष्य को लेते हैं, कहते हैं भाई आप जानते हैं मैं जानता हूं कि मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, परंतु आप जानते हैं कि तब आत्मा मुझे बताता है मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, परंतु आप देखिए वहाँ भीतर अब भी वो बात वहाँ पर है, देखिए ये एक प्रकार से नियंत्रण करता है और ठीक से ध्यान दें। परंतु जब ये निर्देशन भीतर से आता है तब ये सब मिलाकर बाहर फेंक देता है, ये मार्गदर्शक स्तंभ है, ये नियंत्रण की मीनार है, भीतर के भीतर प्राण आत्मा को नियंत्रित करता है, आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है, इसलिए बाहर की ओर से सफेदी है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वे धार्मिक लोग पहले के जिनको पौलुस ने टूटी हुई दीवार कहता है और आदि आदि, वे बाहर से हर प्रकार से एक विश्वासी और उन्होंने उनके मध्य में भविष्यवाणी की और सब कुछ, परंतु भीतर के भीतर प्राण जो अविश्वासी है, यही कारण है मैं कहता हूँ लोग उछल कूद कर सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, लोग चिल्ला सकते हैं, बीमारों पर हाथ रख सकते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और आदि आदि, विश्वास के द्वारा, ये सारी महान बातें आत्मा के द्वारा अब भी नष्ट हैं अभिषिक्त किए हुए। ध्यान दें, यीशु ने कहा केवल विश्वास करो, विश्वास करने वाले के लिए हर चीज संभव है, विश्वास और कार्य ये दोनों पति पत्नी हैं, ये एक साथ कार्य करते हैं, पति पत्नी के साथ कार्य करता है, पत्नी पति के साथ, ये एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं। जैसे एक पुरुष कहता है वो विवाहित है और फिर भी वो उत्पन्न नहीं कर सकता और पत्नी नहीं दिखा सकता, तो आप उसके दावे पर संदेह करते हैं। एक मनुष्य ने कहा मैं विवाहित हूँ, आपकी पत्नी कहाँ है? मैं उसके विषय में नहीं जानता, समझे, मेरे लिए कठिन बात है कि मैं उसका विश्वास करूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपकी पत्नी कहाँ है? भाई मुझे नहीं मालूम, मैं इसका विश्वास नहीं करूँगा। इसलिए आप देखिए जो आप कहते हैं आपके पास है तो है, मेरे पास विश्वास है, आप मुझे कैसे दिखाने जा रहे हैं कि आपके पास विश्वास है? अपने कामों के द्वारा, समझे। मैं विवाहित हूँ, आप कैसे जानते हैं कि आप विवाहित हैं? ये मेरी पत्नी है, समझे, आप इसी स्थिति में हैं। मैं विवाहित हूँ, ये मेरा पति है, मैं चंगा हो गया, आप कैसे जानते हैं? मेरे कार्य मेरे विश्वास को दर्शाते हैं, समझे समझे। अब आप किस विषय में बात कर रहे हैं? आपका विश्वास वो है जो परमेश्वर आपके अंदर देखता है, आपके कार्य वो हैं जो दूसरे लोग आप में देखते हैं। यही भिन्नता के लिए यहाँ याकूब और पौलुस अब्राहम की व्याख्या करते हैं। वे कभी भी परस्पर विरोधी नहीं, वे दोनों एक ही थे, विवाहित। ऐसा विश्वास जो कार्य नहीं करता, किसी को भी अधिकार है कि आपकी गवाही पर संदेह करे। अब क्या आप इसे सुनते हैं इसके पहले कि हम प्रार्थना पंक्ति आरंभ करें? यदि आपका विश्वास इसके साथ कार्य ना करे तो आप किसी को विश्वास नहीं करवा सकते कि आप चंगे हो गए। कहते हैं भाई मैं नहीं जानता, समझे क्यों? हाँ, निश्चय ही संसार का सारा विश्वास मेरे पास है। आपके पास नहीं है। क्यों? यदि आपके पास विश्वास है तो फिर कार्य विश्वास से विवाहित है। वे पति और पत्नी है, एक दूसरे को प्रमाणित करता है। आइए एक मिनट के लिए अब्राहम के विषय में सोचें। अब्राहम का पवित्र बंधन पूरा था। देखिए, उसके पास सारी चीजें साथ साथ थीं। उसने अपने विश्वास के विरुद्ध वाली बातों को ऐसे माना कि जैसे वह ना हो, और उसी सिद्धांत पर कार्य किया। मैं कल्पना कर सकता हूँ, लगभग 20 वर्षों के पश्चात कोई आया और बोला, राष्ट्रों के पिता अब्राहम, तूने कहा कि तेरा नाम अब्राहम है, जिसका अर्थ राष्ट्रों का पिता। इस समय तेरे पास कितने बालक हैं अब्राहम? उसे इससे जरा भी ठोकर न लगी। बाइबल ने बताया कि वो परमेश्वर के वचन से जरा भी न डगमगाया अपने अविश्वास के द्वारा। वो तैयारी में आगे बढ़ता रहा, सारी छोटी छोटी जूतियां तैयार करता रहा, और चिड़िया आंख और ये सारी चीजें। वो बालक पाने जा रहा था बस। यहाँ तक कि सारा ने कहा, तुम जानते हो कि क्या होने जा रहा है, तुम्हें बालक मिलने वाला है, परंतु मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार तुम्हें बालक मिलने जा रहा है। अब हाजरा मेरी लौंडी है, मैं उसे तुझे दूंगी, क्योंकि तब बहुविवाह मान्य था, और उसके बालक होगा, और उस बालक को मैं अपने लिए ले लूंगी। परंतु अब्राहम ने इसका विश्वास ना किया। नहीं, वो ये नहीं करेगा, परंतु सारा उसको इसके करने के लिए प्रेरित थी। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, जाकर उसकी सुन। परंतु उसने कहा, फिर ये वो नहीं है जिसकी मैंने तुझसे प्रतिज्ञा दी है, इस प्रकार से प्रतिज्ञा नहीं की है। अब ध्यान दें, उसने किसी भी विरोधी बात को कहा, और उसका शरीर तब मृत प्राय सा था। ऐसे ही सारा का गर्भ, अब वो बूढ़ा पुरुष 100 वर्ष का, सारा 90 की। अब ध्यान दें, अब सारा का गर्भ निष्क्रिय, या उसका मरण संसा शरीर, उस पर भी विचार नहीं किया। इसे सुनिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, व्यवस्था से वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था भी नहीं, वहाँ उसका टलना भी नहीं। अब इसे सुने, कौन आशा के विरोध में? आशा के विरोध में सारी आशा चली गई थी। ओ, हर बार मैं उस छोटी सी अनुभूति पे जाता हूँ, वो ब्लूप्रिंट, नीला नक्शा। यहाँ वो अध्याय है जो मैंने निकाला, रोमियो 4। देखिए, जैसे कि लिखा है, मैंने तुझे राष्ट्रों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, समझे? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो। अब 19वां पद सुने, और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर विश्वास में निर्बल ना हुआ, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 100 वर्ष की आयु में देखिए, अब उसकी देह मरी हुई, उसका पौरुषत्व और सारा का गर्भ मरा हुआ, इसका विचार तक नहीं किया। जब उस पर प्रकट हुआ, इस पलंग का विचार नहीं किया, आप अपाहिज हैं या आप जो भी हैं, इस पर नहीं सोचा, पहिए वाली कुर्सी पर कोई विचार नहीं। उस छोटे लड़के के लिए संभव है, लकवाग्रस्त हो, ये चाहे जो भी है, मैं नहीं जानता, इस पर कोई विचार नहीं, इसके लिए सोचा भी नहीं। परंतु डॉक्टर ने कहा वो यहाँ से कभी नहीं बाहर आएगा, डॉक्टर ने कहा वो कभी नहीं निकलेगी, इससे तो सोचा ही नहीं। भाई देखिए, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं अधेड़ हो रहा हूँ, ये कभी विचार में ही नहीं आया। और हम अब्राहम के बालक हैं, हालेलुया, न कि जैसा इसहाक था, परंतु उसके शाही वंश यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो उसके पास था। अब्राहम का वंश अंत के दिनों में आ रहा है तारों के समान चमकने को। अब्राहम के बालक, जिसने अपनी देह के विषय में नहीं सोचा, अब मृत है, न ही उसके लिए विचार किया, यहाँ तक कि प्रश्न भी नहीं किया कि परमेश्वर इसे करेगा या नहीं। परमेश्वर ने कहा है वो इसे करेगा, क्यों? ये उस पर प्रकट किया गया। क्या ये ठीक बात है? जब ये आप पर प्रकट हो गया, जब ये वास्तव में कुछ आप इसे घटित नहीं कर सकते, इसे आप पर प्रकट होना ही है, तब आप किसी बात को सोचेंगे भी नहीं। ये कितना असंभव है, मत सोचिए कि डॉक्टर ने क्या कहा। आप मत विचार करिए मामा ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। आप बस ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। उसने अपने देह के विषय में नहीं सोचा कि मरी जैसी है, ना ही सारा के गर्भ की मरी सी दशा, ये विचार में भी नहीं लाया। ओह, ये तो मुझे झकझोर देता है। मरी सी देह, ना ही सारा के गर्भ की मरी सी दशा अपने विचार में भी नहीं लाया। हालात का भी विचार नहीं करेगा जब विश्वास अच्छी भूमि पाता है, जब जीवांश सूत्र पुरुष से निकलकर स्त्री में अंडा पाता है और दोनों उपजाऊ हैं, कुछ घटित होने जा रहा है। हालेलुया। डॉक्टर कह सकता है आपको बालक नहीं होगा, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ आपके सूत्र आपकी देह में मर गए और उसके अंडे कभी भी उपजाऊ नहीं होंगे, परंतु उस उपजाए अंडे को, उस जीवांश को अंडे तक पहुँचने दें। एक बार देखिए क्या होता है, वो छोटा लड़का या छोटी लड़की दृश्य में आती है। क्यों? विश्वास ने अपनी अच्छी भूमि पाई। कार्य कार्य को जाता है, कोशिका के ऊपर कोशिका, और यहाँ ये छोटा सा आता है। आमीन। परमेश्वर हम पर दया करे। ओ परमेश्वर, यदि हम मजबूत मसीही जैसा हमें होना चाहिए, यदि हम पुरुष या स्त्री होते हैं जो परमेश्वर को उसके वचन पर लेते हैं, आप इसे नहीं कर सकते जब तक ये आप पर प्रकट ना हो जाए। मुझे जल्दी जल्दी करना है। ध्यान दें, परमेश्वर का पवित्र विश्वास उसके भविष्यद्वक्ता के पवित्र कार्य के साथ मिलता है। इसमें रखें, परमेश्वर का पवित्र विश्वास अब्राहम पर प्रकट हुआ, उसने इसे ग्रहण किया और वहाँ से उसने अपना पवित्र कार्य आरंभ किए। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के बीज को बढ़ाने के लिए स्थान था। क्या हो यदि वो कहे, अब्राहम भाई सारा, तुम जानती हो कि कुल मिलाकर 25 वर्ष हो गए हैं जब से परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की। ओ यदि कुछ होना होता, देखिए, परंतु ये नहीं होगा, परमेश्वर जानता है ये नहीं होगा। क्या होता यदि मरियम कहती, अच्छा भाई एक मिनट रुको, एक कुंवारी गर्भधारण, वे मुझे कलीसिया से बाहर कर देंगे यदि मैं जाकर इस प्रकार की बात कहूंगी। वो इस तरह के विचार सोच सकती थी यदि वो तैयार भूमि ना होती। उस भविष्यद्वक्ता ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो ये तय हो गया, समझे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। उपजाऊ भूमि वहाँ पर है और जब वचन वहाँ गिरता है, ये पकड़ करता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब जल्दी से, जबकि हम इसे समाप्त करते हैं, देखिए, बीज को छिपने का स्थान था, परमेश्वर इसे जानता था, या फिर वो कभी भी अब्राहम को प्रतिज्ञा नहीं देता। अब जरा ध्यान से सुने, परमेश्वर जान गया वो प्रतिज्ञा कहाँ जा रही थी। उसने अब्राहम को कभी भी नहीं बुलाया जब तक कि वो 75 का नहीं हुआ, परंतु वो आरंभ ही से उसका ठहरा हुआ बीज था। ऐसे ही सारा, ध्यान दें, स्मरण करें, उसके पास बाइबल नहीं थी कि उसमें से पढ़े, उसके पास नहीं थी जितनी सरलता से आज हमें मिली है कि उसका वचन पढ़ें और दूसरों को देखें कि किसने इसे लिया है। स्मरण रखें, उसके पास ये प्रकाशन के द्वारा थी और यही वास्तविक चीज है। वैसे ही जैसे ये याकूब के द्वारा था उत्पत्ति में, वहाँ कोई बाइबल नहीं थी। स्मरण करें, मूसा ने उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और व्यवस्था को लिखा। इनमें से कोई भी चरित्र किसी बाइबल में से पढ़ने को नहीं था, मूसा तक। क्या ये ठीक बात है? उसके पास बाइबल ना थी जो हमारे पास है कि हमारी दुर्दशा में हमारी सहायता करे। वे कठोर लोग थे जो उन्हें परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया और वे ठीक वहाँ डटे रहे, उन्हें किसी ने भी ना हिलाया था। अब क्या आप सोचते हैं कि हमारे पास अभी वो कठोर विश्वास हो सकता है यदि ये आप पर प्रकट हुआ है? इस प्रकटीकरण को जरा क्षमा करना, इस समय गवाही बंद करने से थोड़ा पहले मुझे यहाँ दो जुड़वा शहर, मैं सोचता हूँ कि भाई ब्राउन और वो मेरे साथ थे और मैं यूसुफ के जीवन को ले रहा था बाइबल में और मैंने वो बाइबल पढ़ी। वहाँ एक मनुष्य था जिसके विरोध में कुछ नहीं था, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ और वे सारे, इनके विरोध में कुछ है परंतु यूसुफ के विरोध कुछ नहीं। क्या ही पुरुष, एक सिद्ध पुरुष, मसीह की एक सिद्ध प्रतिछाया। जब मैं वो पढ़ता हूँ, एक दिन मैं रोने लगा अपने छोटे पुराने होटल के कमरे में और मैं अपनी अलमारी के पास गया जहाँ मेरे कपड़े लटक रहे थे, दोनों दरवाजों को भेड़ा और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं यूसुफ जैसे पुरुष के लिए धन्यवाद देता हूँ जो कभी पृथ्वी पर रहा, मेरे समान शरीर में एक मनुष्य जो आप पर विश्वास कर सकता और आपका वचन लेता। वो भाइयों के द्वारा द्वेष पात्र ठहरा, वो आत्मिक था, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने दर्शन देखा, वो स्वप्न का अनुवाद कर सकता था, इसके लिए सबने उससे द्वेष रखा, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था, बस वो जो वो है वो है। देखिए, ये औरों के लिए नहीं था, उन्हें उससे प्रेम करना चाहिए था, परंतु बजाय इसके जब उसने उन्हें बताया कभी बातें उनके विरोध में, ओ वे कहते हैं यहाँ स्वप्नहारा आ रहा है, समझे, और उन्होंने उसे बिना कारण द्वेष रखा। मैंने कहा उन्होंने ये क्यों किया, और फिर भी वो व्यक्ति कभी नहीं हिला, वो वहीं स्थिर रहा। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, ओ परमेश्वर, ऐसे व्यक्ति के लिए धन्यवाद। और वहीं पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, मुझसे कहा तुम्हारे पास एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम जोसेफ रखना। मैं वहां से उठा और प्रभु को धन्यवाद दिया। बेकी वहां पीछे बैठी है, लगभग तभी जन्मी थी, वो लगभग एक वर्ष की थी, वो शल्य चिकित्सा से हुई थी। मेरी पत्नी के परिवार में कुछ ऐसा है कि शल्य चिकित्सा से, क्योंकि वे स्त्रियों जैसी लचक वाली नहीं, हड्डियां पुरुष के समान ठोस हैं, और माँ की शल्य चिकित्सा से निकाला गया। और डॉक्टर ने मुझे बताया, उसने कहा भाई बहनम, आप इस स्त्री से दूसरा बालक कभी नहीं चाहना, कहा इनका गर्भाशय गुब्बारे के समान पतला है। उसने कहा अच्छा हो कि मैं इनकी डिम्बवाही नली बंद बांध दूं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा करने के विषय में ना सोचें डॉक्टर। उसने कहा ठीक है, उसको दूसरा बालक नहीं होना चाहिए, कहा तुम उसे नष्ट कर दोगे, कहा वो मर जाएगी, कहा हमारा भयानक समय था, कहा वो इसे नहीं कर सकेगी। तब प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे एक पुत्र मिलने वाला है और उसका नाम जोसेफ होगा। मैं इस विषय में कभी नहीं डरा, आप में से बहुतों को याद है, मैं इसकी घोषणा करता रहा कि मुझे एक बालक मिलने वाला है, उसका नाम जोसेफ होगा। कितनों को यह याद है, निश्चय ही सारे राष्ट्र में हर कहीं लोगों को बताया, एक बालक होने जा रहा है, उसका नाम जोसेफ होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिनलैंड में छोटा लड़का जीवित हो गया मरे हुए से। भाई जैक ठीक वहाँ थे जब ये घटित हुआ, आप लोगों को 2-3 वर्ष पहले बता दिया था, इसके पहले की घटित होता। एक छोटा लड़का होगा, वो कैसे कपड़े पहने होगा, वो कहाँ पड़ा होगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये कैसे होने जा रहा है मैं नहीं जानता, परंतु मुझ पर यह प्रकट किया गया था कि यह घटित होने जा रहा है। मुझ पर यह प्रकट किया गया कि मैं एरिजोना जा रहा हूँ और वहाँ मैं 7 स्वर्गदूतों से मिलूंगा, और तब वे मुझे बताएंगे एक संदेश जो मुझे प्रचार करना था, और वो 7 मोहरें थी, ये घटित हुआ। मैं ये कहता था, कितनों को याद है, टेप आदि इसके लिए होंगे, और ये घटित हुआ। पत्रिकाएं हर चीज ने इसका चित्र उतारा कि वहाँ वातावरण में उजियारा था, वे अभी तक इसे नहीं समझ पाए ये वहाँ था। मुझे याद है भाई जैक को बुलाया और इस विषय में पूछा कि मसीह वहाँ खड़ा है, और भाई जैक ने कहा ये अपनी महिमा वाली स्थिति में है, समझे। मैं भाई जैक से प्रेम करता हूँ, वो एक बढ़िया धर्म विज्ञानियों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूँ, परंतु मैं इसे ठीक नहीं बैठा पाया। मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा प्रभु ये कैसे है, ये युवा यहाँ है, मैंने कहा ऊन जैसे बालों के संग, उसने कहा वो बालों की टोपी पहने हैं, इसके पहले कि ये घटित हो पुस्तक में देखें, मैंने ये कहा। और उस दिन जब ये हुआ ये ऊपर गया, और तब आप इस चित्र को एक और घुमाएं, यदि आपके पास लुक पत्रिका या लाइफ पत्रिका इसमें से एक है, एक और घुमाएं, वो उसमें ठीक सिद्ध रूप में हॉफमैन का मसीह का चेहरा ठीक वहाँ नीचे देख रहा है जहाँ मैं खड़ा था, ये वहाँ उस पत्रिका में है। कितनों ने यहाँ कभी देखा है, वास्तव में आप सब ने देखा, वहाँ पीछे देख रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि प्रकाशन सही था। क्यों? बालों की टोपी पहनी, क्यों? पुराने अंग्रेजी न्यायी यहूदी न्यायी बालों की टोपी पहना करते थे, अब भी इंग्लैंड में वे पहनते हैं, जब वो सर्वोच्च अधिकार वो सफेद बालों की टोपी पहनता है, और ये उसे दर्शाता है कि वो वहाँ खड़ा हुआ है और दूतों के पंख से सफेद टोपी ओढ़े है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो सर्वोच्च न्यायी है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, वो अल्फा और ओमेगा सा दिखाई पड़ता है। और वो वहाँ एक युवा पुरुष था, 30 वर्ष से अधिक का नहीं, और सफेद बालों की टोपी पहने हैं, दर्शा रहा है कि वो सर्वोच्च अधिकारी है, परमेश्वर पिता ने न्याय का सारा अधिकार पुत्रों के हाथ में दिया है। हालेलुया, प्रकाशन कभी गलत नहीं है, जो भी है इसे बोलता है, कोई मतलब नहीं, ये सुनने में कैसा प्रतीत होता है, ठीक वचन के साथ। अब स्मरण रखे 4 वर्षों पश्चात मेरी पत्नी, हमें मालूम पड़ा कि हमें एक बालक होने वाला है, और किसी ने कहा क्या ये जोसेफ आ रहा है, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि है, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे जोसेफ मिलने वाला है। जब ये जन्मा ये सारा थी, तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा और मेरे सामने मुझ पर हंसा, उसने कहा जानते हैं क्या आपका अर्थ जोसफीन था, वो मर गया, मर गया। मैंने कहा श्रीमान, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मुझे एक पुत्र मिलने वाला है और मैं उसका नाम जोसेफ रखूंगा। 3 लोग थे जिन्होंने एक विशेष नामधारी छोड़ा और हमारी कलीसिया में आए और मुझे ये कहते सुना, जब सारा जन्मी उन्होंने कहा ओह ये एक झूठा भविष्य रखता है। मैंने कहा महिला एक मिनट रुकिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कब, ना ही परमेश्वर ने कहा कब। उसने मुझे बताया होने वाला है, वो आ रहा है। अब्राहम को बताया कि वे इसहाक को पाने वाले थे, परंतु इस समय के बीच में इश्माइल जन्मा, परंतु इससे वो हटा नहीं लिया गया। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है मैं इस लड़के को पाऊंगा और हम उसका नाम जोसेफ रखेंगे। डॉक्टर ने कहा जब वो आए, उसने कहा आदरणीय मैं उन दोनों नलिकाओं को बांधने जा रहा हूँ। मैं बोला, मैंने कहा आप ये ना कीजिए। मैंने कहा, उसने कहा आप फिर से विवाह कर सकते हैं और अभी वो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा मैं उसे इसी के द्वारा पाने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मैं बाइबल में से नहीं पढ़ सकता, परंतु ये मेरे हृदय पर प्रकाशन के द्वारा लिखा है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा से हटना ना चाहा। उनमें से कुछ ने कहा आपका अर्थ जोसफिन, मैंने कहा मेरा अर्थ जोसेफ है। डॉक्टर ने कहा वो दूसरा बालक नहीं जन्मा सकती, मैंने कहा वो दूसरा बालक जन्मा सकती है। 4 वर्ष बीत गए, अंततः वो फिर से मां बनने वाली थी। तब एक स्त्री एक झूठी भविष्यवाणी समस्त राष्ट्र में लिखे शब्दों में कहा, अब मैडा मरने वाली है इस समय के चलते, क्योंकि मुझे लीड बिल के पास भेजा गया और ये कहा गया वो मेरी नहीं सुनेगा क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, और यहाँ तक कि परमेश्वर उसके साथ करने जा रहा है उसकी पत्नी को मारने के द्वारा। मैंने कहा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरी अगुवाई करने को भेजा है, समझे। और मैंने कहा मुझे आत्मा से अगुवाई हुई है। बेचारी मीडा, हमारे पास एक नर्स थी जो वहाँ सभा में चंगी हुई थी, आप सब श्रीमती मॉर्गन को जानते हैं, मायो की नर्स, बड़ा खराब मामला था। वो अभिलेख में थी, मर गई लगभग 20 वर्षों पहले कैंसर से, सरकोमा कैंसर। लुविल में बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के अभिलेख में है। वो जेफरसन विले में अस्पताल की देखरेख में थी। वो वहाँ इन वर्षों से थी क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जिएगी। इसलिए मैडा का उससे प्रेम था और उसने कहा मैं चाहती हूँ मार्जी तुम मेरे साथ आओ, बिल मेरा अस्पताल जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा मत बनाओ, हम मार्जी से प्रेम करते हैं, परंतु मार्जी हमारी परमेश्वर नहीं, मार्जी हमारी बहन है। और मैंने ग्रीन मिल तक साथ छोड़ दिया और मुझे परेशानी से तोड़ दिया, मैं उसे प्रेम करता हूँ। मैं ग्रीन मिल तक गया और उसने कहा बिल क्या तुम सोचते हो कि मैं मरने वाली हूँ, और मैंने कहा मैं नहीं जानता, परंतु बालक उत्पन्न होने जा रहा है, जो भी हो आपको जोसेफ मिलने जा रहा है। उसने कहा क्या ये वो है, मैंने कहा प्रिय मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, परंतु परमेश्वर ने कहा हमें जोसेफ मिलने वाला है, मैं चिंता नहीं करता कोई क्या कहता है, हमें जोसेफ मिलने वाला है, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने मुझसे सारे प्रकाशन दिए मुझे ये बताया कि वो कभी दूसरे पर असफल नहीं हुआ और वो इस पर भी असफल नहीं होगा। मैं मिल प्रार्थना करने को गया और वहाँ आरंभ किया और वहाँ दो पेड़ों के बीच में ज्योति लटक रही थी, कहा अपने वचन पर वापस जाओ पुस्तक में, और मैं बाइबल पर वापस आया और ये मेरी कार में रखी थी, और जब मैंने ये किया तो हवा ने इसे वहाँ खोला जहाँ नातान बैठा हुआ था और दाऊद, कहा जा मेरे दास दाऊद को बता। मैंने उसे भेड़शाला से लिया अपने पिता की भेड़ों की चरवाही से, और मैंने उसे बड़ा नाम दिया, एक महान पुरुष के समान, ना कि सारे महान नाम परंतु एक महान पुरुष के समान। उसे बिली ग्राम नहीं बनाया परंतु उसे एक नाम दिया, आप जानते हैं। कहा भाई मैंने ये किया है, परंतु कहा मैं उसे मंदिर नहीं बनाने दे सकता, परंतु उसका पुत्र। और जैसे ही ये कहा गया उसका पुत्र, ओ ये वहाँ पर था, मैंने कहा जोसेफ ये ठीक बात है। ठीक वहीं उस घर में गया और वहाँ वो छोटा इतना बड़ा लड़का, वो कठिन तरह से चल नहीं सकी, बाहर मैदान में जा रही थी। मैं दौड़ा, अपने हाथ उसके चारों ओर डाले, मैंने कहा प्रिय जोसेफ आ रहा है, जोसेफ मार्ग में है। कोई भी जानता है शल्य चिकित्सा से आप बालक को जाने नहीं दे सकते। उस रात्रि बालक नीचे आया, पानी निकला, हर चीज। अगली प्रातः 7 बजे हम अस्पताल को गए, डॉक्टर ने कहा ओ दया करो। मैंने विदाई का चुंबन किया, प्रिय अधिक समय नहीं होगा, जोसेफ यहाँ होगा। वहाँ सीढ़ियों पर वो इस प्रकार गई, ऑपरेशन की टेबल पर। कुछ ही मिनटों में नर्स आई, बोली आदरणीय बर्नम, मैंने कहा हाँ माता जी, बोली आपको अच्छा 7 पाउंड 3 औंस का पुत्र मिला है। मैंने कहा पुत्र जोसेफ स्वागत। जी हाँ श्रीमान, क्यों क्यों, ये क्या है, ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं था कि ये घटित होगा, परंतु बाइबल का वही परमेश्वर जिसने अब्राहम पर प्रकट किया, हमने उसके गर्भ में मरी सी दशा स्थिति में विषय में नहीं सोचा कि इस प्रकार से असंभव होगा। तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास से न डगमगाना, परंतु आप परमेश्वर की महिमा करना, जानते हुए कि ये घटित होना ही है। मैं चिंता नहीं करता कि डॉक्टर क्या कहता है, हर चीज कुछ भी हर प्रकार से मार्ग से आएगी, परंतु आप इसका विश्वास न करना, ये शैतान का झूठ है। जी हाँ श्रीमान, सत्य है। विश्वास कार्य के साथ साथ चलता है कि प्रतिज्ञा की सृष्टि करे। जल्दी करूं, ठीक ऐसे जैसे ये कहा रहा वैश्या, याकूब ने कहा कार्यों से धर्मी ठहरी, परंतु क्यों, उसका विश्वास। उसने कहा मैंने सुना है परमेश्वर तुम्हारे संग है। उसने ये नहीं देखना चाहा कि यहोशू अपने बाल कैसे बनाता था या वो अपने कपड़े कैसे पहनता है। उसने कहा मैं समझती हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। कुल मिलाकर यही आवश्यक था, वो तैयार हो गई। ठीक जैसे आज सच्चा दर्शन मैं कुशणों में बंद कर रहा हूँ। आज परमेश्वर की ओर से सच्चा दर्शन, ये आज के लिए प्रतिज्ञा का वचन है। कहते हैं ये दर्शन भाई ब्रनम, आपको ये कहाँ से मिला? लोगों को इससे ठोकर लगती है। क्या प्रेरित 2:17 में नहीं कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे? क्या ये ठीक नहीं है? यही जो बाइबल ने कहा। ठीक है, अब यदि ये ऐसा है, मलाकी 4 अध्याय में भी देखें और मालूम करें कि ये आज की प्रतिज्ञा नहीं है क्या? आप कैसे इसमें विश्वास कर सकते हैं? बाइबल ने ऐसा कहा है। अब आप लूका 17:30 लें और इसे पढ़ें। यीशु ने कहा, जैसा ये सादोम के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा। जैसा ये सादोम में था, अब आज संसार की स्थिति को देखें, सादोमी बिली ग्राम को देखें और ओरल रॉबर्ट, उन दोनों गवाहों को, वे वहाँ नामधारी कलीसियाओं में गवाही दे रहे हैं, एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, दूसरा पेंटेकोस्टल को, ये वाला, वो वाला और दूसरा वाला। परंतु स्मरण रखें, अब्राहम सादोम में नहीं था, वो पहले ही बाहर था और वहाँ एक रुका और उससे बातें की, उसे चिन्ह दिखाया अपनी घूमी हुई पीठ से। उसने कहा, सारा को बालक उत्पन्न होने जा रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा की गई, आमीन, अपनी घूमी हुई पीठ के साथ, और उसने उसे पुकारा, परमेश्वर एलोहिम। अब ये आज हो रहा है क्योंकि हमारे पास विश्वास है, और मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर का है, क्योंकि ये और दूसरा पवित्र लेख इस ओर संकेत करते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 कहा कि 7वें दूत के संदेश की घड़ी में, जब वो अपना संदेश देना आरंभ करेगा, चंगाई सभा में नहीं, परंतु संदेश जो चंगाई के बाद आता है। यीशु गया और प्रचार किया, उसने कहा, उसने बीमारों को चंगा किया और सब कुछ। ओ वो युवा रब्बी, वो भविष्यद्वक्ता, वो महान व्यक्ति, हम उसे अपनी कलीसिया में चाहते हैं। परंतु एक दिन वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं और पिता एक हैं, ओ प्रभु, तब उन्होंने उसे और ना चाहा। जी हाँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, उसने इसकी व्याख्या नहीं की, कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो तुम्हारे में जीवन नहीं। क्यों? मैं कल्पना करता हूँ कुछ डॉक्टर और नर्सों ने कहा होगा, ये व्यक्ति नरपिशाच है, हमें अपना लहू पिलाना चाहता है। देखिए, वे इसे नहीं समझ सके, वो ये जानता था। वे चेले इस योग्य ना थे कि इसकी व्याख्या कर सकते थे, परंतु जो भी है, वो वहाँ बैठे रहे और इसका विश्वास किया, आमीन, क्योंकि ये उन पर प्रकाशित किया गया था। जी हाँ श्रीमान, वे जानते थे, पवित्र शास्त्र ने इसकी घोषणा कर दी थी। तब ये मुझसे पूछा जा सकता था, ये जो आप कह सकते हैं, आपका विश्वास इन दर्शनों पर क्यों विश्वास करता है, जबकि बहुत सी झूठे नकली चल रही हैं? मैं थोड़ा सा कुछ बोलने जा रहा हूँ, एक मिनट के लिए, थोड़ा सा कठोर। जबकि बहुत सी झूठे नकलें आसपास हैं, मेरे भाई स्मरण रखें, उनके लिए भी बोला गया है कि उन्हें भी इस समय में यहाँ पर होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है।
Moses went down to perform the works of God before the people, and there was Jambres and Jambi standing there.
परंतु इसे पहले करने वाला कौन था? तो फिर दूसरे नकल करने वाले ठहरे थे, क्योंकि पहले मूल को वहाँ होना चाहिए कि वे उसकी नकल करें। यदि वे मूल थे, ओ नहीं, हम नहीं, हम नष्ट होने वाले नहीं, हम जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं। देखिए, पवित्र शास्त्र के द्वारा और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, इसलिए आप शांत खड़े हैं। क्यों? ये पुरुष दर्शन आदि देखता है, वो ये करता है, और ये इस व्यक्ति की पत्नी के साथ घूमता है, वो 3 ईश्वरों में विश्वास करता है, और ये सारी बातें, ये इसे जरा भी नहीं हिलाते। और यहाँ एक चीज है जिसकी नकल वे नहीं कर सकते, वो वचन, ध्यान दें। वे सारी चीजें पा सकते हैं, वे अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं, वे चिल्ला सकते हैं, आत्मा में नाचते, और फिर भी शैतान, ओ ये ठीक बात है, परंतु ये वचन उन्हें आंकता है, समझे? ये बिल्कुल ठीक बात है, यही जहाँ ये आता है। जैसे मूसा और जम्ब्रेस, और स्मरण रखने, उसने कहा, जैसे जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, अंत के दिनों में नकल करने वाले फिर पृथ्वी पर खड़े होंगे। क्या उसने ये कहा है? भाई वे हमारे यहाँ हैं। परंतु मूसा इससे हिला नहीं, जब मूसा ने पलटकर और प्रभु के नाम में आश्चर्यकर्म किया, और यहाँ ये नकल करने वाले खड़े हैं, वही चीज की, ये उसे नहीं रोक पाए। कहते हैं, भाई मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ठीक है कि मैं छोड़ दूँ इस कार्य क्षेत्र को। वो वहीं स्थिर रहा, किस लिए? उस पर ये प्रकाशित किया गया था, हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन से जानता था, वो जानता था कि अंततः वचन इन्हें पकड़ लेगा, वो जानता था कि समय आएगा कि वचन स्वयं को प्रकट करेगा और वे आगे ना बढ़ सकेंगे। ऐसे मैंने इसे जाना इन सारे वर्षों में, ये ठीक बात है। जब समय आएगा, कोई आश्चर्यकर्म परमेश्वर भेजता है, एक वास्तविक आश्चर्यकर्म, तो यहाँ सदा सारी व्यवस्था में बदलाव आ जाता है। यदि परमेश्वर कुछ कलीसिया में भेजता है और पुरानी व्यवस्था नहीं बदलती, तो उसने बेकार में भेजा। जब एक संदेश चिन्हों और आश्चर्यकर्मों में आगे आता है, तो एक संदेश इसके पीछे आता है। जब यीशु बीमारों को चंगा करता हुआ आगे बढ़ा, तब अपने संदेश पर आया, मैं और पिता एक हैं, मैं वो हूँ, समझे? देखिए, उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों का विश्वास किया। कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इन चमत्कारों का विश्वास करो। कहा, वे तुम्हें गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। ओ प्रभु की महिमा हो। पहले कौन था? मूसा। तो फिर उन्होंने उसकी नकल करी, परंतु वो महान सच्चाइयाँ अब भी वैसी बनी रही। सही और गलत के बीच वे संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, वे शुद्ध संदेश को स्वीकार नहीं कर सकते जो परमेश्वर के वचन से है। मैं चिंता नहीं करता कि यहूदा ने सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्यकर्म दिखाए, परंतु वो जब पेंतिकोस्त पर पवित्र आत्मा लेने का समय आया, उसने अपना रंग दिखा दिया। वो शैतान आ सकता है और हर चीज की नकल मार सकता है, और जब तक वो इस वचन पर आए, परंतु सारा वचन नहीं ले सकता, वो सब कुछ ला सकता है। हो सकता है एक वचन तक, जैसा हवा ने किया, शैतान ने हवा के साथ किया, परंतु वो सारे को पार न कर सका, क्योंकि सारी चीज मसीह की देह, अब वचन को देखें, ना ही कर सका, वे नहीं कर सके, अब संदेश को नहीं ले सके, ना ही जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का संदेश लिया, वे ये ना कर सके, उनके नकल के कार्य पकड़े गए, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकने में योग्य थे, अपने अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रमाणित हुए, समझे? वे बाहर इसराइल का अनुकरण नहीं कर सके, क्यों? वे नामधारी कलीसिया के बालक, मिस्री बालक, वे उस वचन का पालन ना कर सके। यदि उन्होंने किया तो उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ता, नील उनके लिए अच्छी थी, और वे ये नहीं कर सके। यद्यपि वे कामों की नकल कर सकते थे और वो करते जो मूसा ने किया, परंतु उनकी मूर्खता प्रकट हो गई थी। जब उनके छोड़ने का समय आ गया था, तब परमेश्वर ने वास्तव में उनके ऊपर उंडेल दिया। वैसे ही अब वे सब प्रकार की नकल कर सकते थे और सारी बातें, इससे कुछ नहीं होता, परंतु सही बात प्रकट होती है और कोई भी विश्वास करने वाला बालक जानता है कि यह सत्य है। यहाँ ये आप स्पष्ट रूप में देखते हैं, तब उनकी मूर्खता के कार्य, उनकी नकल। यदि आपके कार्य सच्चे वचन हैं और इसके द्वारा प्रमाणित हैं, आपके विश्वास के द्वारा ये प्रकट हो जाएगा, और जैसे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसके लिखित मूल वचन में, यीशु ने कहा, यदि मैं वे कार्य ना करूं, ध्यान से सुने, यदि मैं कार्य नहीं करता, मैं इसमें जोड़ूं, जो कि यदि मैं वो कार्य ना करूं जो तुम्हें बताता है मैं करूंगा, जो अपने युग में मैंने किए जब मैं आया, जो मसीह को करने थे जब वो आता है, यदि वे चीजें जो मैं करता हूँ, यदि परमेश्वर उस वचन को प्रमाणित ना करे जो उसने कहा कि होगा, यदि मेरा जीवन उस वचन को ना जिए, ठीक वैसे ही जैसे कहा गया कि ये किया जाएगा, इसमें चूके नहीं। यीशु कह रहा है, तुम जानते हो कि मसीह को क्या करना है, तो यदि वो वचन जो लिखा है और मैं इसे अपने जीवन से प्रकट ना करूं, तो फिर मैं वो नहीं हूँ। आमीन। तब वो दिन जिसके विषय में मैं कह रहा हूँ गलत है, जो यूहन्ना ने मेरे विषय में कहा वो गलत था। और फिर यदि मैं मसीह नहीं हूँ, यदि वे कार्य जो मसीह को करने थे उसे होना है, तुम्हारे प्रभु परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा, और तुम्हारे पास 400 वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं है, और यदि वे कार्य जो मैं करता हूँ, जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, यदि वे मेरे वर्तमान जीवन में प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं वो नहीं हूँ। परंतु यदि प्रतिज्ञा का वचन जो इस युग का है मुझ में प्रमाणित है, तो फिर मैं वो ही हूँ, और प्रतिज्ञा तुम्हारे पास आ गई। ओ प्रभु, नहीं दिखता कि ये कितना स्पष्ट हो सकता है? यदि प्रतिज्ञा नहीं, ओ तब यदि उस दिन की प्रतिज्ञा मेरी सेवकाई में प्रकट होती है, यीशु ने कहा, तो फिर मैं वो ही हूँ। इसलिए यदि तुम कठिनता से विश्वास करते हो कि मैं कौन हूँ, तो इन कामों को देखो जिनकी प्रतिज्ञा आज के दिन के लिए है। आमीन। इन कार्यों को देखो जिनकी प्रतिज्ञा की गई है। यदि वे कार्य पूरे नहीं किए गए प्रत्येक मेरे अंदर, तो फिर मेरा विश्वास ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत बताया। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, जरा देखो कि बाइबल ने क्या कहा इस युग में होगा। यदि ये नहीं होता है, तो फिर ये सही नहीं है। यदि ये गलत बातें या नहीं है, और वे सारी दूसरी चीजें और वे बातें जो घटित होनी चाहिए, यदि वो या नहीं है, तो मैं गलत हूँ। परंतु यदि ये है, यीशु ने कहा, तो फिर मैं वही हूँ। आमीन। मैं वही हूँ जिसके आने की प्रतिज्ञा की गई है। ओ प्रभु, वही काम जिनकी प्रतिज्ञा की गई थी उसके दिन में उसे प्रमाणित किया कि वही मसीह है। क्या आप इसका विश्वास नहीं करते? अब भाई, यदि लूका 17 अध्याय के कार्य और 30वां पद यीशु मसीह की प्रतिज्ञा ठीक उसके आने के पहले कि संसार सदोम में बदल जाएगा और संदेश वाहक बाहर आएंगे और ठीक वैसी ही बातें की जाएंगी, यदि ये घटित नहीं हो रहा है तो फिर मेरा विश्वास ना करो कि मैंने तुम्हें सत्य बताया है। परंतु यदि ये घटित हो रहा है तो विश्वास करो कि ये वही है, उस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। आमीन। मनुष्य का पुत्र मांस की देह में प्रकट होगा। आप लोग कलीसिया ठीक वैसे ही जैसे सदोम के दिनों के पहले था, एक बाहर निकाला हुआ झुंड उनमें से बाहर बैठा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का विश्वास कर रहा है। महिमा हो। तो फिर वे कार्य जो पवित्र आत्मा आज कर रहा है, इन दर्शनों के द्वारा जो कभी असफल नहीं हुए, प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं हुई, सारे प्रेरिताई के चिन्ह जिनकी प्रतिज्ञा बाइबल में दी गई है, मलाकी 4 की और ओ प्रकाशित वाक्य 10:7, सब कुछ पूरा हो रहा है और विज्ञान से प्रमाणित हुआ हर प्रकार से। और यदि मैंने आपको सत्य नहीं बताया तो ये बातें घटित नहीं होंगी, परंतु यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो वे इस बात का अभिलेख है कि मैंने आप लोगों को सत्य बताया है। वो अब भी वैसा ही है, कल, आज और सर्वदा, और उसके आत्मिक आत्मा का प्रकटीकरण दुल्हन को निकाल रहा है। होने पाए वो विश्वास प्रकाशन आपके हृदय को मिले कि यही घड़ी है। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जो देह में प्रकट हुआ व्यक्ति यीशु मसीह, जो मरुओं में से तीसरे दिन वचन के अनुसार जी उठा और ऊंचे पर चढ़ गया और चेलों को सारे संसार में चेले बनाने को भेजा और कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, परमेश्वर पेंतिकॉस्टल कलीसिया को आज के दिन वरदान लौटाएं। प्रभु, संभव है उनमें से आज यहाँ कुछ उपस्थित होंगे, कुछ संसार में टेप सुन रहे होंगे। होने पाए वे ये अनुभव करें कि ये दुल्हन की बुलाहट है, ना कि एक पेंतिकॉस्टल संदेश। पेंतिकॉस्टल संदेश कलीसिया में वरदानों की वापसी था, परंतु ये दुल्हन की बुलाहट है, दूसरा संदेश जिसे सदोम के जलने के पहले आना था। प्रिय परमेश्वर, इन्हें ये समझने दे, विश्वास। मैं इसका विश्वास करता हूँ क्योंकि ये आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन में होकर प्रकट किया गया है और प्रमाणित किया गया है और समस्त संसार पर प्रकट किया गया है। निश्चय ही प्रभु, अल्पसंख्यक ही सदा इस प्रकार आपका झुंड रहा है, परंतु आपने कहा छोटे झुंड तू मत डर, तेरे पिता की यही इच्छा है कि तुझे राज्य दे। इसलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से देखेगा जो वे सोच सकते हैं, उससे अलग देखेगा और वचन में देखेगा। और पिछली रात्रि बोला गया था कि लोग यहाँ रानी के समान सोचें जैसे बाबुल के महान विनाश में हुआ। उसने कहा तुम्हारे मध्य में डैनियल नाम का मनुष्य है, तेरे पिता के राज्य में था, पेंतिकॉस्टल पूर्वज उसके राज्य में थे और वो सारे संदेहों का दूर करने वाला है। और अब प्रभु, पवित्र आत्मा जो पेंतिकॉस्टल राज्य में था, वो राज्य जो मार्टिन लूथर का था, जॉन वेस्ली का था, जॉन स्मिथ और एलेक्जेंडर कैम्पबेल से होते हुए, वो विचारों का परखने वाला, वो सब जांचने वाला, और लोग लूथर के दिनों में वो व्यक्ति धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मेथोडिस्ट सारे संदेहों को दूर किया कि उन्हें पवित्र होना चाहिए, और पेंतिकॉस्टल दिनों में वे भाषाओं में बोले, दिव्य चंगाई के द्वारा पवित्र आत्मा को प्रकट किया और आदि आदि। इसने पेंतिकॉस्टल हृदयों के सारे संदेह दूर कर दिए, परंतु ओ परमेश्वर, वे नामधारी हो गए वे ठीक मनुष्य के विचारकों को लेने के लिए वापस हो गए। इसलिए अब जब दुल्हन बुलाई जा रही है, जैसा कि आपने यहाँ वचन में प्रतिज्ञा की है, एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि मैं संसार के सामने पड़ रहा हूँ और हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं, परमेश्वर होने पाए कि ये लोग हृदय के सारे संदेह समाप्त कर दें, होने पाए ये स्वतंत्र पुत्र के पास तुरंत आ जाएं पकने के लिए, ताकि खत्ते में लिए जाएं, भूसे में जलने के लिए ना छूटें, परंतु आज रात्रि खत्ते में चले जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ही आपके हृदय से व्यवहार करे। अब क्या आप, हमने प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, अब हम प्रार्थना पंक्ति के लिए लगभग 20 मिनट लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत पंक्ति बना ली जाए और मंच पर आए और प्रार्थना करें। और अब मैं नहीं जानता कि कितने कार्ड दिए गए हैं। मैंने बिली से यहाँ तक कि एक बात भी कभी नहीं पूछी, वरन मैंने कहा क्या तुमने दे दिए। नीचे गया और कुछ कार्ड दे दिए और वो वापस आया और अपनी माँ और मुझे और उन्हें लिया थोड़ी देर पहले। क्या आपने 100 या 1 और 1 से 100 या क्या आरम्भ किया? 1 से 100, ठीक है। हम प्रार्थना पत्र नंबर 1 लें, यदि आपके पास है अपना हाथ ऊपर उठाएं ताकि मैं देख सकूं। यदि आप नहीं कर सकते, यदि आप खड़े नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते, हम आपको ले लेंगे। प्रार्थना पत्र नंबर 1, ये किसके पास है? आप क्या कहते हैं? नंबर 1, मुझे क्षमा करें, ए नंबर। ये महिला यहाँ पर है, क्या आपके पास ये कार्ड है? सीधे यहाँ आ जाएं, क्या आप आएंगी? ए नंबर 2, क्या आपके पास है कोई? जल्दी अपना हाथ उठाएं और यहाँ पर आप आ जाएं। नंबर 3, प्रार्थना पत्र है आपके पास? प्रार्थना पत्र है? आप सबके पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं है? ओ ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं है। 3, 4, 5, ए 1, 2, 3, 4, 5, हम देखें वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ए ठीक है, यहाँ वे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, पंक्ति में हो जाएं, पंक्ति बनाना आरंभ करें। अब यदि आप नहीं आ सकते हैं, अपना हाथ इस प्रकार से हिलाएं ताकि वे आपको संभाल के ले आए। मैंने यहाँ लोगों से कहा है जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, होना ही है नहीं, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप अपाहिज लोग यहाँ देखें, मैं समझता हूँ उसे जल्द आना चाहिए क्योंकि उसने मैंने उसे बताया कि जल्द। अब आपके पास प्रार्थना पत्र अवश्य नहीं, यदि जैसे मैंने सोचा आपके पास विश्वास है। देखिए, यदि ये आप पर प्रकट हुआ है ठीक है, यदि आप पर प्रकाशित नहीं हुआ कोई बात नहीं। यदि आप दर्जनों प्रार्थना पंक्तियों में हो, ये जरा भी आपकी सहायता नहीं करेगा। आप ये जानते हैं या आप इसका विश्वास करते हैं? देखिए, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं वो सब जो कर सकता हूँ, अपने घुटनों पर आ जाएं और आप पर हाथ रखूं, आपका तेल से मसा करूं, जो भी हो आपने चाहा और प्रार्थना की, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके हृदय में प्रकट ना हो कि ये हो गया, तब ये हो गया। आपको पंक्ति में भी नहीं होना है या कहीं भी, जो भी है ये हो गया, ठीक है। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 17, 18, 19, 20, क्या कोई है जिसे मैंने बुलाया जिसके पास प्रार्थना पत्र है और उठ नहीं सकता? अपना हाथ उठाएं, प्रार्थना पत्र है और उठ नहीं सकता। ठीक है, केवल विश्वास। मैं बेचारी छोटी बूढ़ी एना जीन को बैठे हुए देख सकता हूँ, सारी रात्रि बजाती है, लगभग एक समय था। मैं चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ वास्तव में शांत और श्रद्धा में रहे, जैसा कि आप जानते हैं, केवल विश्वास। अब प्रार्थना पत्र 1 से 15, मैं विश्वास करता हूँ ये था, केवल विश्वास। वे यहाँ थोड़ी भीड़ लगा रहे हैं, इसलिए हम आराम करें। आप क्या कहते हैं? संभव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप यहाँ पर बहुत से ले रहे हैं, ये जो हैं हमने बुलाए उससे अधिक हैं, ये ठीक है, शांत खड़े रहें। आप जहाँ भी हैं, नहीं कोई नहीं, आपको मिलेगा जिसके लिए आपने प्रार्थना मांगी है। परंतु थोड़ा देखिए, थोड़ी प्रतीक्षा करें, वे आपका नंबर पुकारेंगे, तब आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे खड़े हुए हैं। नहीं, यदि प्रभु को कुछ करना चाहिए तो आप लोगों की तरफ से आंखें मूंद लें, और वे इसे नहीं देख सकते, आप देखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आइए इन रुमालों के लिए प्रार्थना करें जबकि तैयारी कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर, यहाँ ये रुमाल रखे हुए हैं जो कि बीमारों और अपाहिजों के पास से आए हैं। ये विश्वास जिसके विषय में हम अभी बातें कर रहे थे प्रभु, मुझे याद है आप बाइबल में कह रहे हैं यहूदा की पुस्तक में उस विश्वास के लिए यत्न करते रहो जो एक बार सौंपा गया और संतों की देह से उन्होंने रुमाल छुआए, इसलिए नहीं कि वे विशेष लोग थे परंतु इसलिए क्योंकि वे विश्वास करने वाले लोग थे। वे हमारे समान दुख सुख भोगी थे। उन्होंने कहा एलिया ऐसे ही था और उसने गड़गड़ाकर प्रार्थना की कि वर्षा ना हो और परमेश्वर उसने प्रार्थना की ताकि लोग पश्चाताप कर लें। आपने उस पर प्रकट किया कि उनके लिए प्रार्थना करें, इस प्रकार करें कि आपका वचन पूरा हो। कोई संदेह नहीं कि आपने भविष्यद्वक्ता को दर्शन दिखाया और प्रभु आज रात्रि मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि ये चंगे हो जाएं। मैं एलिया नहीं हूं, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया था परंतु उसका जीवन और आत्मा अब भी जीवित है। इसलिए प्रिय परमेश्वर की आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हम सब की सुनेंगे, जैसा कि हम इन रुमालों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जब ये बीमारों पर रखे जाएंगे वे चंगे हो जाएंगे। पिता, हम अनुभव करते हैं कि हम मरते हुए लोगों की पीढ़ी हैं, हम बढ़ रहे हैं अनंतता का सामना करें। संसार पागलपन में चला गया है, छोटी लड़कियां टुकड़ों में कट गईं और हर ली गई हैं। लोग मनुष्य अपने बाल महिलाओं के समान काट रहे हैं, स्त्रियां जैसे पुरुष वे भ्रष्ट हो रहे हैं। जाति मर रही है, संसार मर रहा है, हर चीज मर रही है, कलीसिया मर रही है। ओ परमेश्वर जीवन लाएं, जीवन लाएं। ओ परमेश्वर जीवन का विश्वास प्रभु इन लोगों पर प्रकट करें। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और इन पर हाथ रख के कर सकता हूँ, परंतु आप ही हैं जो इन्हें चंगा कर सकते हैं और केवल आप ही चंगा कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप करेंगे पिता हर एक को, प्रभु इसे प्रदान करें मेरे हाथ के साथ जो इनके ऊपर है, और अपने पूरे हृदय से मांग रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में इन लोगों को चंगा करें, आमीन। भाई क्या ये माइक काम कर रहा है? अब क्या आप ठीक सुन रहे हैं? हर कोई सुन रहा है, अपने हाथ उठाएं। अब जो भी है, मेरा हृदय यहाँ इन लोगों पर है जो यहाँ कुर्सी चारपाइयों और स्टेशनों पर हैं। इनके पास प्रार्थना पत्र भी नहीं है, समझे? परंतु भाई देखिए, इन लोगों के पास प्रार्थना पत्र है, इसका ये अर्थ नहीं कि ये ही ठीक होने जा रहे हैं। वहाँ लोग मंडली में बैठे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि वे लोग चंगे होने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कहता कि वे होंगे या चंगे नहीं होंगे। ये सब तो परमेश्वर में विश्वास करने पर निर्भर करता है। कितने जानते हैं कि ये सही बात है? बस उनका विश्वास परमेश्वर में। अच्छा, आप कितने जानते हैं कि ये सत्य है? कोई मतलब नहीं आप कितने धार्मिक हैं, कितने अच्छे और बुरे हैं आप। जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके हृदय में न उतरे, आप कभी चंगे नहीं होंगे। अब कितने जानते हैं कि परमेश्वर ने ये कर दिया है, ये साथ साथ कर दिया है, महान चमत्कार चिन्ह और आश्चर्य कर्म। और अब आज रात्रि आप आ रहे हैं, आप इस पंक्ति में खड़े हुए हैं, इसलिए नहीं कि आप इस पंक्ति में खड़े होने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। ये नहीं है, आपको बस प्रार्थना पत्र मिला है, ये बस आपके पास। विधि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा आदरणीय भाई गेरहोल्सर यहाँ अपनी सेवकाई को वर्षों पहले आरम्भ किया, परमेश्वर में विश्वास के साथ, परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, बीमारों को विश्वास से चंगा करना। और ये कभी नहीं बदला, परंतु अंत के दिनों में परमेश्वर ने इसमें वरदान मिलाए। परमेश्वर ने ये किया इसलिए नहीं कि उसे ये करना ही था, परंतु इसलिए कि उसने प्रतिज्ञा दी थी, और यदि उसने प्रतिज्ञा दी है तो उसे ये करना है, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। और उसने आपसे भी वही प्रतिज्ञा की है, जो कि यदि आप विश्वास कर सकें तो ये घटित होगा, यदि आप इसका विश्वास नहीं कर सकते तो बस ये नहीं होगा। अब मैं आपसे विश्वास नहीं करवा सकता, न ही आप अपने से विश्वास करवा सकते हैं, परमेश्वर ही इसे आपको देगा। ये परमेश्वर का वरदान है कि विश्वास करें। आपका विश्वास नहीं, परमेश्वर का विश्वास। आपका बुद्धि वाला विश्वास कर सकता है, ये अच्छा है, परंतु जब तक परमेश्वर का विश्वास आपके हृदय में ना हो, देखिए, आपकी बुद्धि का विश्वास इसे करने के लिए स्वीकार कर सकता है, और इसका विश्वास अपने सारे हृदय से करते रहें जब तक परमेश्वर इसे आप पर प्रकट ना कर दे, समझे? बस विश्वास करते रहें जब तक परमेश्वर इसे प्रकट ना कर दे, परंतु जब तक इसे प्रकट ना कर दे। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आप वहाँ क्या कहते हैं? जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने हिस्किया के पास नबी को भेजा और उसे बताया कि पलंग से ना उठेगा, यहोवा यूं कहता है तू पलंग पर ही मर जाएगा, ये ठीक बात है ना? परंतु नबी घूमा, यानी उस राजा ने अपना मुंह दीवार की ओर किया और दुखी होकर रोया और कहा, प्रभु मुझे 15 वर्ष और चाहिए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सुन ले। अब राजा राजनीति में एक महान व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में भविष्यद्वक्ता। वो परमेश्वर का राजा, परंतु ये परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता। इसलिए परमेश्वर ये भविष्यद्वक्ता पर प्रकट किया कि कुछ ले, कुछ उबाल। आप जानते हैं, समझे? अब ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि मैंने यहाँ पवित्र वचन प्रचारा है, जैसे कि ये सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। इन दिनों में कि कलीसिया पर प्रकट हो रहा है, नहीं, इन दिनों में कि मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा है। प्रकट हुआ, ये क्या है? मालूम हुआ, ये ठीक है? प्रकट होना, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में, ये एक सादोम के दिन के समान होगा और गमोरा। क्या ये ठीक बात है? अब देखिए क्या घटित हुआ। उनके दो विशेष संदेश वाहक थे वहाँ, सदोम और गोमोरा में, क्योंकि वहाँ मसीहों का गुनगुना झुंड था। क्या ठीक है? और उनके दो विशेष दूत थे। अब ध्यान से सुने, वहाँ सदोम और गोमोरा में प्रचार हो रहा था, परंतु उनमें से एक यहाँ अब्राहम के झुंड के पास खड़ा रहा। ये ठीक बात है? अब देखिए, हमारी कलीसिया के इतिहास में कभी भी विश्वव्यापी संदेश वाहक कलीसिया के लिए, जिसका नाम HAM से समाप्त हुआ, अब तक नहीं हुआ। GRAHAM, जो कि 6 अक्षर हैं, GRAHAM, परंतु अब्राहम का नाम का अक्षर विन्यास ABRAHAM, 7 अक्षर, समझे? इसलिए विश्वव्यापी कलीसिया मनुष्य का अक्षर होने के नाते 6 मनुष्य की बनाई हुई संस्था अभी अपना संदेशवाहक पाया। उनके पास शैंकी, मूडी, फैनी, नॉक्स, कॉलविन आदि आदि थे, परंतु HAM कभी नहीं हुआ। क्या ये ठीक बात है? परंतु अब उन्हें मिला है और वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक है। वो उन दीवारों को जितना हो सकता है तोड़ रहा है। यहाँ से बाहर निकलो, प्रायश्चित करो या नष्ट हो जाओ। परंतु स्मरण रखें, चुने हुए, पहले से ठहराए हुए, पहले से अभिषिक्त किए हुए वाचा में अब्राहम और उसका झुंड के पास भी संदेशवाहक है। ध्यान दें, उसने क्या किया? उसने उन्हें एक चिन्ह दिया कि आग गिराने का समय निकट है। अब ये आग है जिसकी हम राह देख रहे हैं, परमाणु आग, परमेश्वर का क्रोध। अब उस संदेशवाहक ने कुछ किया, उसने उन स्त्रियों के विषय में बोला कि उसने अपनी पीठ घुमा ली और उसे बताया कि वो क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है उस पर वो संदेह कर रही है, उसकी दशा को बताया और क्या घटित होने जा रहा है। क्या ये ठीक बात है? क्या उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र स्वयं को उस दिन इसी प्रकार से प्रकट करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सत्य है? भाई, यहाँ एक महिला खड़ी है और कलीसिया के अदृश्य मिलाप में दुल्हन का मसीह से वो संदेशवाहक अब यहाँ पर है, जो कि यीशु मसीह है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब वो केवल अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा होकर बोलता है। बाइबल ने ऐसा कहा है, वो अपने भविष्यद्वक्ताओं को पहले बताए बिना कुछ नहीं करता। Amos 3:7, उसने सदा यही किया है, वो अपना नमूना कभी नहीं बदलता, समझे? और यदि ये सत्य है तो भविष्यद्वक्ता ही केवल बोल सकता है जो परमेश्वर उसे बताता है। क्या ये ठीक बात है? क्या ये सही है, सत्य है? क्या विश्वास करते हैं वो मुझे बता सकता है कि इस महिला के साथ क्या मामला है, इसके पहले कि मैं इसे देखूं भी? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्यों? ये कैंसर से पीड़ित है, ये ठीक बात है। ये उसकी छाती पर है, उसके पास एक पुत्र है जो उसके विचारों में है। वो एक प्रकार से मस्तिष्क की दशा से पीड़ित है, तंत्रिका दशा से और उलझने। ये ठीक बात है। क्या आप इसका विश्वास करती हैं? ये सत्य है कि नहीं? अब क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास ये कर रहा है, लंगर डाल लिया है जो आपको मिला, आप इसे लेने जा रहे हैं? तो जाइए, प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा, समझे? जी हाँ, समझे। क्या आप विश्वास करते हैं अपने पूरे हृदय से? क्या आप विश्वास करते हैं बिना इस महिला को देखे प्रभु यीशु मुझे बता सकता है कि इनकी क्या परेशानी है? कितने इसका विश्वास करते हैं? अब आप जानते हैं, और यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं, केवल मैंने एक स्कर्ट देखा, मैंने जानता नहीं, बता सकता हूँ कि ये पुरुष या स्त्री है, केवल वहाँ खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि ये विश्वास करे। महिला, क्या आप विश्वास करती हैं? यहाँ रोगी, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथ को उठाएं। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, आप बालक पा सकती हैं जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग रही हैं, समझे? आप विश्वास करते हैं, आपका परमेश्वर में विश्वास है, अब ये चंगा नहीं करता, इसने बस पहचाना है, ये कार्य है जो विश्वास को प्रमाणित करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को, उसका वचन प्रकट हुआ। ये स्त्री महान चीज के लिए प्रतीक्षा कर रही है, ये बालक नहीं परंतु ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, यदि आप इन सिगरेटों से छुटकारा पा लें, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जाइए इसका विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? ये पुरुष जो यहाँ खड़ा है, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, मैं इसे नहीं जानता, परंतु इसकी छाती में कुछ गड़बड़ है जिससे ये पीड़ित है, अधिक से समय नहीं हुआ ये गिरा है, ये यहाँ से नहीं है, ये अरकनसास से आया है, ये प्रचारक है, घर जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, समझे समझे। मैंने इस पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा, एक महिला यहाँ खड़ी है, मैं महिला को नहीं जानता, मैंने अपने जीवन में उसमें कभी नहीं देखा, परमेश्वर उसे जानता है। यदि वो ये प्रकट कर सके कि उसकी क्या परेशानी है या उसके विषय में कुछ है, क्या विश्वास करेंगे आप सब? ये केवल एक प्रमाणित कार्य है कि विश्वास, जिसे मैंने प्रचार करना था, कि जो आज रात्रि मैंने बताया, यही है जो परमेश्वर ने प्रकट किया है और ये कार्य से सिद्ध कर रहे हैं। अब आपके पास विश्वास होना ही चाहिए कि चंगे हों। ये स्त्री यहाँ है, मैं नहीं सोचता कि मैं इसे जानता हूँ, जी हाँ मैं इसे नहीं जानता, परंतु मैं किसी को जानता हूँ जिसे ये जानती है, क्योंकि मैं उसे यहाँ अपने सामने खड़े देख रहा हूँ, ये सिर दर्द से पीड़ित है। महिला, क्या ये ठीक बात नहीं? क्या विश्वास करती है कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? पेरीग्रीन की बहन, ये ठीक बात है, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये ठीक बात है। मैं पेरीग्रीन को यहाँ खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मेरी ओर देख रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, आइए सीधा देखिए, मैं नहीं जानता कि पेरीग्रीन कहाँ है। क्या आप विश्वास करती हैं? आप कितना विश्वास करती हैं? यदि आप विश्वास कर सकें तो हर बात संभव है, यदि आप विश्वास नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता। ये छोटी महिला सफेद बालों के साथ यहाँ बैठी हुई मेरी ओर देख रही है, ठीक यहाँ, क्या आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर सकता है? क्या आप वहाँ के विषय में क्या सोच रही हैं? छाती पर फोड़ा है, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके लिए इसे हटा सकता है? विश्वास रखिए और विश्वास कीजिए। अब इसने किसे छुआ? स्त्री ने उसके वस्त्र के छोर को छुआ। बाइबल ने कहा, आप जो बाइबल पाना चाहते हैं, उसने कहा वो महायाजक है जिसे अपनी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है, क्या ये ठीक नहीं? वो महायाजक है और वो ठीक यहाँ पर खड़ा है, अब लोग उसे छू रहे हैं। वहाँ एक छोटी दुबली पतली महिला है, अपना हाथ उठाया हुआ है, ठीक यहाँ बैठी है, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु इसने तभी कुछ छुआ। यहाँ यही जो था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, उसकी छाती में परेशानी है, उसे पेट में भी परेशानी है। यदि आप विश्वास करें तो परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने वालों के लिए सब चीजें संभव हैं। वहाँ एक व्यक्ति वहाँ पीछे बैठा है, इधर देख रहा है, लगभग दूसरी पंक्ति में इधर आ रहा है, दमे से पीड़ित है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा श्रीमान? यदि आप इसका विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, जो आप मांगते हैं आप पा सकते हैं, यदि आप इसका विश्वास करें। यहाँ ये महिला जो ठीक यहाँ बैठी है, सफेद बालों वाली, उस पार से मेरी ओर देख रही है। यदि आप पूरे हृदय से विश्वास करें, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है, तो फिर पित्त की सारी परेशानी आपको छोड़ देगी, यदि आप इसका विश्वास करेंगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, यहाँ चरपाई पर पड़े हैं? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? यदि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी बताता है तो आप क्या उसका विश्वास करेंगे? यदि आप विश्वास करेंगे तो वो कैंसर आपको छोड़ देगा और आप चंगे हो जाएंगे। आप क्यों नहीं उठ के खड़े होते हैं और अपनी खाट लेकर और घर जाएं? क्या विश्वास करते हैं? क्या आप सब विश्वास करेंगे? अच्छा, अब इस समय के विषय में क्या है? क्या परमेश्वर ने आपके हृदय में वो विश्वास डाला? हर कोई यहाँ अपने हाथ उठाए, यदि परमेश्वर ने ये विश्वास आपके हृदय में डाला है, आइए हम एक दूसरे पर हाथ रखें, यहाँ नीचे पंक्ति से होते हुए अपना हाथ ऊपर रखें, ठीक, अब जल्दी से, जबकि पवित्र आत्मा है, अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। वो पुरुष खड़ा हुआ है पंक्ति के पीछे की ओर, भाग रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आइए अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हर कोई, अब आगे बढ़ने की और आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह को कल, आज और सर्वदा एक सा प्रमाणित हो रहा है। आप आपके जो भी रोग हैं, ये जो भी हैं, यदि आप उसका विश्वास करें तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं अभी और विश्वास करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, अपनी सामर्थ को भेजें और लोगों के इस झुंड को चंगा करें। अभी यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।